जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भीष्म पितामह व्रत परिपालन।
भीष्म पितामह व्रत परिपालन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
सर्प शास्त्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे।
सर्वशत्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जय गावे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
विपदाओं में श्री हरि त्राता।
विपदाओं में श्री हरि त्राता।
पतिव्रता सावित्रीयम को जीतति पावे।
पतिव्रता सावित्रीयम को जीत कीर्ति पावे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
धर्मराज का स्वधर्म पालन।
धर्मराज का स्वधर्म पालन।
भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन।
भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन।
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन।
अभिमन्यु का व्यूह विभेदन।
हरि सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
हरि सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
भारत पंचम वेद आरती।
है कृष्ण वही है,
जहाँ धर्म है कृष्ण वही है,
सत्य धर्म की सदा विजय है,
सत्य धर्म की सदा विजय है,
यही सिखावत व्यास देव है,
यही सिखावत व्यास देव है,
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे,
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे,
भारत पंचम वेद भारती सुर नर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद भारती सुर नर मुनि गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
जय जय भारत
पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
पाप मुक्ति का मोह निवारण,
पाप मुक्ति का मोह निवारण,
पुण्य विवर्धन कलिवर जीवन,
पुण्य विवर्धन कलिवर जीवन,
वेद सार संताप विनाशन,
वेद सार संताप विनाशन,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयंती पावे,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयंती पावे,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयंती पावे,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजयंती पावे, जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे, जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे,
आरती सुर नर मुनि गावे,
आरती सुर नर मुनि गावे,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि,
त्वमेव माता शुभ्रा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्रतका त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव, सेवन्ति कामकुलचं पथपाटलाद्यै पुण्यारुजातिगरवीररसालपुष्पै
बिल्वप्रवाल तुलसी नरमञ्जरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, गोपाल कृष्ण भगवान की जय,
भजे व्रजैक मण्डलम्,
भजे व्रजैक मण्डलम्, समस्त पाप खण्डनम्,
समस्त पाप खण्डनम्,
स्वभक्त चित्तरञ्जनम्,
स्वभक्त चित्तरञ्जनम्,
सदैव नन्द नन्दनम्,
सदैव नन्द नन्दनम्,
सुपेच्छ गोच्छ मस्तकम्,
सुपेच्छ गोच्छ मस्तकम्,
सुनाद वेणु हस्तकम्,
सुनाद वेणु हस्तकम्,
अनङ्गरङ्ग सागरम्, नमामि कृष्णनागरम्,
नमामि कृष्णनागरम्,
मनोजगर्वमोचनम्,
मनोजगर्वमोचनम्,
विशाललोललोचनम्,
विशाल
ಅಂಬುಜೈಕ ಮೋದನಂ
नमामि कुञ्जमध्यगं
नमामि नमामि
कुञ्जनायकं
विदग्धगोपिकामनो
मनोजकल्पशायिनं
नमामि कुञ्जकानने
मया
सदैव गीयता
सदा
कृपा विधीयता प्रमाणि काष्ठतत्त्वयम् गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
गंगा माता की
जय।
गौ माता की
जय।
भारत माता की
जय।
वेदव्यास भगवान की
जय।
शुकदेव भगवान की
जय।
महर्षि वाल्मीकि भगवान की
जय।
देवर्षि नारद भगवान की
जय।
ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की
जय।
ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की
जय।
नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव।
नमामि सद्गुरुं शांतम् सच्चिदानंद विग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदी वल्लभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्याम् श्रुतिमार्गदक्षैः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरा सेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्ततु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेश नन्दिनीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् दत्तां महस्तन्मात्वं पित्रा राजन् मृतो मया अयाचतो भयं नास्ति दत्ताञ्च प्रतिगृह्णतः त्वरितं देवयान्याथ सन्दिष्टं पितुरात्मनः सर्वं निवेदयामास धात्री तस्मै यथा तथम्।
अनंत चंद्र परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज, भगवान वेदव्यास जी महाराज जनमेजय तथा अन्य समस्त उपस्थित श्रोताओं के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। देवयानी और कच्छ, इनका अत्यंत घनिष्ठ प्रेम संबंध रहा। इस संबंध को देवयानी ने अन्य अर्थ में लिया और कच्छ का दृष्टिकोण अन्य था। देवयानी इस प्रेम को घसीटती हुई स्वयं दाम्पत्य प्रेम की ओर बढ़ती जा रही है और कच्छ धर्मनिष्ठ होने के कारण इस प्रेम में भ्रातृभाव रखता हुआ देवयानी को अत्यंत चाहता है। प्रेम बहुत था लेकिन प्रेम का अंतिम प्रयास परस्पर शाप प्रदान करने में हो गया। परिणामतः देवयानी को ब्राह्मणपति मिलना ही नहीं था। देवयानी ने कच्छ को शाप दिया, कच्छ ने देवयानी को शाप दिया। यह सारा वृत्त जब ययाति से कहा गया तो महाराज ययाति के भी ध्यान में यह बात आने लगी और स्वयं देवयानी के पिता धर्मनिष्ठ आचार्य शुक्राचार्य महाराज इस सारी बात को कहकर के ययाति से यह बात कह देते हैं कि राजन देखो,
मृतो नया पतिर्वीर सुतया त्वं ममेष्टया गृहाणे मां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज।
स्वयं शुक्राचार्य महाराज ने अपनी ओर से ययाति से कहा कि देवयानी की बात पूर्णतया सत्य है और इसने जब आपका वर्ण किया है न केवल मेरी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं चला करके इसका कन्यादान आपके लिए करना चाहता हूं। बात यहां तक तो ठीक हुई लेकिन इस कन्यादान के इस विवाहोत्सव के समय में देवयानी ने एक विचित्र हठ कर लिया। देवयानी ने कहा, पिताजी बहुत दिन हो गए यहां पर आपको, महाराज विश्वरा के राज्य में रहते हुए और इनके राज्य का संरक्षण करते हुए आपने जीवन बिताया, यहां पर आपका कोई मूल्य है नहीं। अब मैं ययाति के साथ विवाह करके चलने वाली हूं तो आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा वहां पर आप सम्मान से रहेंगे। शुक्राचार्य महाराज ने कहा, बिटिया तुम्हें क्या हो गया है? देवयानी ने सारा किस्सा सुनाया। किस्सा क्या था? कल हमने देखा था कि महाराज ययाति को देवयानी वन में एक जलाशय के समीप गड्ढे में गिरी हुई मिली। वो गड्ढे में गिरी कैसे, यह प्रश्न वैसे ही रह जाता है। घटना इस प्रकार की हुई थी कि देवयानी और शर्मिष्ठा ये दोनों घनिष्ठ सहेलियां हैं। दैत्यों के राजा वृषपर्मा है, वृषपर्मा की कन्या शर्मिष्ठा है, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य की कन्या देवयानी है। राजा की कन्या और राजगुरु की कन्या, इन दोनों का परस्पर अत्यंत प्रेम है और ये दोनों अपनी अन्य सहेलियों के साथ उस दिन वन विहार करने के लिए गई थी। आपकी भाषा में पिकनिक मनाने के लिए गई थी। तो वहां पर अब जलाशय में स्नान करना था, तो वस्त्र अल्प थे शरीर के ऊपर, स्नान कर रही थी निश्चंक अवस्था में। इतने में क्या हुआ, एकाएक इनका ध्यान गया, आकाश मार्ग से भगवान महादेव और पार्वती माता नंदिकेश्वर के ऊपर विराजमान होकर के जा रहे हैं। इन कन्याओं ने देखा, देखते ही अत्यंत मर्यादा के साथ ये भागती हुई बाहर आई और जो उनके वस्त्र थे हड़बड़ी में उन वस्त्रों को उन्होंने धारण कर लिया। इस हड़बड़ी में देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने धारण कर लिए। अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने धारण कर लिए तो देवयानी के बचे हुए जो वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा धारण कर ली थी, लेकिन राजगुरु की कन्या होने के कारण मेरे वस्त्र चाहे देवयानी धारण कर ले, गलती हो गई, शर्मिष्ठा धारण कर ले, उसके वस्त्र मैं धारण नहीं कर सकती। एक सामान्य बात है ना, किसी महात्मा को आपने माल्यार्पण किया और महात्मा जी ने प्रसाद के रूप में आपके गले में वो माला पुनः अर्पण कर दी, ये बात तो चलती है, लेकिन अपने गले की माला उतार करके किसी महात्मा को आपने पहना दी तो क्या होगा, ये गड़बड़ हो गई। तो यहां पर औचित्य भंग है या क्रम का विपर्यास है। सख्य में इतना विचार करने की वस्तुतः आवश्यकता नहीं, लेकिन अब ये हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना होता है। देवयानी ने कहा यह कैसे हो सकता है, उसके कपड़े मैं कैसे धारण कर सकती हूं। अब ऐसा न करने पर भी आपत्ति काल में कुछ भी करने की धर्मशास्त्र की अनुमति है। आपत्ति काल देखो, हमारे यहां पर जो सनातन धर्म का विचार मैंने स्वयं किया, मैं यूं ही सनातन धर्म का पूरी तरह भक्त नहीं बन गया, इसके सारे पहलुओं को मैंने अपने ढंग से सोचा। केवल हमारी पोथियों में है, ग्रंथों में है, इसलिए मान लेना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण मेरा पहले नहीं रहा, लेकिन विचार करने पर अनेक बातें ध्यान में आती है कि इससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं, हो सकता नहीं संसार में। अभी मैं कहना यह चाहता था, बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन धर्मशास्त्र का विचार हमारे यहां पर इतना बारीकी के साथ किया गया जो किसी के लिए भी असुविधाजनक नहीं है। जैसे धर्म कहा है, सामान्य धर्म कहा, वैसे आपत धर्म भी कहा है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, उस आपत्ति काल में अब हम जब पूज्य महाराज जी के साथ, हमारे पूज्य गुरु स्वामी जी महाराज के साथ कभी यात्रा करते हैं, अब गुरु को, गुरु के साथ शिष्य को बैठना नहीं चाहिए, बात तो सही है, अब प्लेन में क्या करेंगे। ये वाक्य मैंने महाराज के श्रीमुख से लगभग 10 बार तो भी सुना है। जैसे प्लेन की बात, वैसे भी अन्य अनेक स्थानों में ऐसा कभी होता है, तो महाराज सीधे कह देते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, बैठो। यह सूझबूझ की बात है। अब यह हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस बात को कितनी गंभीरता से और कितनी प्रैक्टिकलिटी से लेता है। धर्मशास्त्र ने तो सारी व्यवस्थाएं ठीक से करी है, देवयानी को यह करने में आपत्ति थी नहीं, लेकिन चलो देवयानी ने उस झुंझलाहट के क्षण में उन वस्त्रों को धारण नहीं किया। और अब भगवान महादेव जी महाराज तो ऊपर से आए और चले गए, वो तो चले गए, लेकिन इधर इन छोरियों का झगड़ा शुरू हो गया। अब ये छोरियों के झगड़े की बात यहां पर तो बहुत बड़ी दी है, महाभारत में ये विस्तार से है, क्या क्या गालियां दी ये भी दिया है, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई और इसमें मुख्य मुद्दा ये रहा, राजा बड़ा है कि राजगुरु बड़ा है। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी को प्रणाम करते हैं रोज, पता है तुम्हें, अभी पिताजी नहीं कहा, उसने बाप ही कहा होगा, लेकिन यहां पर तो इसने कहा कि मेरा बाप सिंहासन के ऊपर बैठता है, तुम्हारा बाप नीचे खड़ा होता है, हम आपका पालन पोषण करते, आदि आदि खूब सारा हुआ। विस्तार की आवश्यकता नहीं। यह बात जब बढ़ गई तो आखिर शर्मिष्ठा ने अपनी सहेलियों से कहा, अरे बहुत बकवास करती है ये, पकड़ो इसको, धकेल दो। और गड्ढे में अब शर्मिष्ठा राजकन्या थी, उसकी सहेलियों ने मिलकर के देवयानी को उस गड्ढे में धकेल दिया और वे सब चली गई। इस घटना से वो देवयानी गड्ढे में गिरी थी जो कल हमने घटना देखी थी, और वहां से ययाति ने उनको बाहर निकाला। अब ये सारी बात देवयानी ने अपने पिताजी को बतलाते हुए कहा कि यह सारा अपमानित जीवन है, आप जैसे महापुरुष को ऐसे अपमानित जीवन जीने की क्या आवश्यकता है, आप मेरे साथ चलिए। शुक्राचार्य महाराज ने कहा चलो। जब वो चलने की तैयारी करने लगे और राजा को पता चला, उत्तम दैत्यों को पता चला, तो वे दौड़ते हुए आए कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। उनको पता है शुक्राचार्य महाराज का जाना सामान्य बात नहीं है। जर्मनी से आइंस्टाइन निकल गए और उन्होंने जाकर के अमेरिका में शरण ली, ये बात जर्मनी के लिए कितनी महंगी पड़ी ये इतिहास जानता है। जैसे वो एक वैज्ञानिक रहे और वो एक केवल व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञान का पुंज है, उसी प्रकार शुक्राचार्य महाराज ज्ञान के पुंज है। व्यक्ति व्यक्ति समान थोड़े होते हैं। सबने बड़ा आग्रह किया कि आप मत जाइए। शुक्राचार्य महाराज ने सीधे कह दिया, भैया मुझे क्या, यहां रहना वहां रहना कहीं भी रहना, देखो सच्चे महापुरुषों को है ना संसार की बातों से ज्यादा रस नहीं होता है, उनको अपना अध्ययन अपना साधन अपना चिंतन अपना मनन इसमें, इसलिए उनको तो थोड़ी दाल रोटी की व्यवस्था कहीं हो जाए, एकांत मिल जाए, बात खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं। उत्तम साधकों के लिए भी यह है, उत्तम वैज्ञानिकों के भी लिए है, उत्तम विद्वानों के लिए भी यही बात है। शुक्राचार्य महाराज ने कहा मुझे क्या है, लेकिन अब ये मेरी बेटी देवयानी बहुत आग्रह कर रही है, तुम उसको मना लो, वो कहे तुम्हें यहां पर रह जाओ। अब उनकी ओर से उनकी बात सत्य थी। राजा विश्वकर्मा ने देवयानी को मनाया। देवयानी ने कहा राजन तुम्हारी कन्या की घमंड में नष्ट करना चाहती हूं, इसलिए यदि मेरे पिताजी यहां पर रहे ऐसा आपको लगता हो तो इसका एक ही उपाय है, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा जो मेरी सहेली रही है वो अब मेरे साथ मेरी दासी बनकर के चलने को तैयार हो तो मेरे पिताजी यहां पर रहेंगे, अन्यथा वे यहां पर रह नहीं सकते, मेरे साथ जाएंगे। मामला बड़ा गंभीर हो गया। एक राजकन्या अपनी सहेली की दासी बनकर के आजीवन वैसा जीवन काटने के लिए कैसे जा सकती है, और पिता उसे कैसे कह सकते हैं धन्य है शर्मिष्ठा। जब शर्मिष्ठा ने इस आपत्ति को देखा, वो स्वयं चला करके आगे आई और उसने कहा पिताजी अकेले के लिए पूरे राष्ट्र के ऊपर संकट नहीं आने देना चाहिए, मेरा भाग्य मेरे साथ है, आप मुझे भेज दीजिए, ये धर्म है। तिलेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तिलेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तिलेद। कभी भी व्यापक के लिए व्याप्य का त्याग करने में हिचकना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति परिवार के लिए त्याग करे, परिवार गांव के लिए त्याग करे, गांव प्रदेश के लिए त्याग करे, और प्रदेश राष्ट्र के लिए त्याग करे। कभी भी व्यापक को सोचना चाहिए। शर्मिष्ठा ने इस बात का स्वीकार किया। जचने वाली बात तो थी नहीं किसी को भी। और इसमें एक बात और है, देवयानी की बात को सुनकर के शुक्राचार्य महाराज हतबुद्ध हो गए। शुक्राचार्य महाराज ने देवयानी को यह बात समझाई कि बिटिया क्रोध की भी एक सीमा होती है, बदला लेने की भी एक सीमा होती है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। अन्य कोई प्रायश्चित देकर के तुम अपनी बात समाप्त कर लो। मानी नहीं, बड़े बाप की बेटी, अब वो अपने पिता का भी मानने को तैयार नहीं थी, आखिर क्या किया जाए। शर्मिष्ठा ने स्वीकार किया और शर्मिष्ठा देवयानी के साथ, उसके साथ और 100 दासियां लेकर के और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के प्रस्थान करती है। ययाति का देवयानी के साथ व्यवस्थाश्रम आरंभ हुआ। शर्मिष्ठा का निवास उस अत्यंत विशाल राजभवन के उद्यान के एक कोने में, जिसको आप लेबर कॉलोनी कह सकते हैं, थोड़ी आपकी भाषा बोलने से आपके ध्यान में तुरंत आता है। अब वो बेचारी वहां रहती थी, देवयानी बन गई महारानी, शर्मिष्ठा बन गई दासी। अब कुछ दिन तो ऐसे निकले, देवयानी ने बदला लिया। माताएं बदला लिए बिना छोड़ती नहीं। अरे लेकिन शर्मिष्ठा भी तो स्त्री थी, उसने बदले का बदला लिया। हमारा जीवन और ये महाभारत की कथा, इसमें आप अनेक बातें ऐसे देखते रहेंगे, बदले का बदला, बदले का बदला, सारा जीवन उसी में खत्म। शर्मिष्ठा ने देवयानी को, शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति को एकांत में कुछ समझाया। शर्मिष्ठा ने रो रो करके ययाति महाराज से कहा, मैं एक राजकुमारी हूं, आपके यहां पर दासी के रूप में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं आपको धर्मशास्त्र के अनुसार बात बतलाती हूं कि आप मेरा स्वीकार उपपत्नी के रूप में कर सकते हैं। शर्मिष्ठा ने धर्मशास्त्र निकाल दिया। न नर्मयुक्तम वचनम ही नस्ति न स्त्री शुराजन्न विवाह काले प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि। कब कब झूठ बोलना पाठक नहीं कहलाता है, इसका विवेचन शर्मिष्ठा कर रही है। ये मैं बतलाने वाला नहीं हूं, वैसे बिना सुने भी बोल रहे हैं, ये और सुनकर के गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मजाक में कभी किसी ने झूठ बोल दिया चलता है। न नर्मयुक्तम वचनम हिनस्ति, कोई रहस्य की बात पत्नी ने पति से पूछी, सबके हित की बात होगी तो सुरक्षा इसी में है कि आप बताना मत, कुछ तो भी बोल करके टाल देना, क्योंकि यदि वो बात गोपनीय रखने जैसी है और इनको पता चल जाता है तो गोपनीय रह सकती। धन्यवाद। कुछ लोग सत्य बोल, इसका कारण क्या है ये भी बाद में देखूंगा। आज मेरे सामने बहुत लंबी कथा है इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। शर्मिष्ठा ने विवाह काले कहा, अपने प्राण जाने की ही बारी आ गई, झूठ बोल करके अपने को बचा लेना चाहिए। उसको धर्मशास्त्र ने पातक नहीं माना है। पंचानृतान्याहु अपातकानि, ये पातक नहीं है। मेरा सर्वस्व ही लूटा जा रहा है। ऐसी अवस्था में मुझे अन्य कुछ बोल करके काम चला लेना चाहिए। शर्मिष्ठा ने समझाया और ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ एकांत में गांधर्व विवाह कर लिया। अब महाराज ययाति के दो गृहस्थाश्रम एक समय चल रहे हैं, देवयानी के साथ और शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी को 2 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए। देवयानी के दोनों पुत्रों के नाम है यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के नाम है अनुद्रुयु और पुरु। अब यह बात खुलती भी नहीं, लेकिन यह बात कैसे डिस्क्लोज हुई इसका बड़ा सुंदर लंबा वर्णन महाभारतकार ने किया है, उतना वर्णन करने का समय नहीं है। लेकिन एक बार घूमते हुए महाराज ययाति जब चले, अब देवयानी उद्यान में घूम रहे थे राजमहल के, और वे कभी उधर जाते नहीं थे जब देवयानी साथ में हो, लेकिन देवयानी का ही मूड हो गया उधर जाने का तो महाराज ययाति को उसके साथ साथ जाना पड़ा। अब जब जा रहे हैं तो सामने से 3 छोटे बच्चे खेलते खेलते आकर के पिताजी पिताजी करते हुए ययाति से चिपकने लगे।
अब जो वो आया किसी चिपकने लगे तो देवयानी ने देखा, अब राजा का चेहरा भी पीला पड़ गया। अरे कौन है करके वो टालना, लेकिन छोटे बच्चे सत्य बोलते हैं ना। तो देवयानी ने पूछा कि ये कौन है? ये राजा ने कहा मुझे पता नहीं है। वो ऐसे ही बोलने वाला था, देवयानी बहुत चालाक, उसने बच्चों को ही पकड़ा। उसने पूछा ये कौन है रे? कहा हमारे पिताजी। कहा तुम्हारी मां के नाम क्या है? रानी महारानी शर्मिष्ठा। और वो तो उसके तो काटो तो खून नहीं। अब वहां देवयानी ने जाकर के शर्मिष्ठा के साथ जो कलह किया है। शर्मिष्ठा शांत है। शर्मिष्ठा ने कहा देवयानी बदला लेकर के तुमने मेरे जीवन का सर्वनाश करना चाहा। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश नहीं किया, मैंने अपने लिए स्थान बना लिया। अब देवयानी तो बहुत चिढ़ गई, चिढ़ करके वो वहां से चली गई शुक्राचार्य महाराज के पास। शुक्राचार्य महाराज को जाकर के उसने सारी बात इतनी बढ़ा चढ़ा करके बतलाई। वे भी चिढ़ गए, मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ, बात तो सत्य थी, वैसे मनाने के लिए ययाति गए। तो शुक्राचार्य महाराज ने आव देखा न ताव कह दिया, उन्मत्त होकर के तुमने यह काम किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, संतावत वृद्ध हो, इसी क्षण तुम वृद्ध हो जाओगे। वाची वीरियन दियानाम। शुक्राचार्य महाराज अत्यंत तेजस्वी पुरुष थे, उनके वाणी में तेज था, ब्राह्मण का तेज ही उसकी वाणी में होता है, क्षत्रिय का तेज उसके बाहुओं में होता है, वैश्य का तेज उसके बैंक बैलेंस में होता है। अरे संजीवनी विद्या के बल पर मृतों को जीवित करने वाले शुक्राचार्य महाराज, वे शाप दे दे महाराज ययाति तो उसी क्षण वृद्ध हो गए। ययाति ने रोते हुए कहा शाप देने से पूर्व आपको विचार करना चाहिए था, इस शाप से आपको क्या मिला, आपकी कन्या का भी क्या कल्याण हुआ और किसका भला हुआ। शुक्राचार्य महाराज के भी ध्यान में आया कि मैंने तो इनका संसार बर्बाद कर दिया, अपनी ही बेटी का, लेकिन अब क्या कर रहा। उनको पछतावा हुआ। आगे चलकर के महाभारत में ही आप यक्ष प्रश्नों में एक प्रश्न सुनेंगे। मुझे तो बड़ा आनंद है कि आप लोग महाभारत सुन रहे हैं। मुझे यदि कोई किसी ग्रंथ को सुनाने का चॉइस देगा ना तो मुझे तो इससे अधिक प्रिय कोई ग्रंथ नहीं है, इतना श्रेष्ठ है। यह सारा जीवन का विज्ञान है। तो यक्ष ने प्रश्न पूछा, 100 प्रश्न हैं, उनमें से कुछ अपन देखने ही वाले हैं बाद में। उसमें एक प्रश्न यह है, किन्न कृत्वा न शोचती। यक्ष ने प्रश्न पूछा, धर्मराज ये बताओ ऐसा कौन सा व्यवहार है जो करने के पश्चात किन्न त्यक्त्वा न शोचती, जो त्यागने के कारण मनुष्य को शोक जीवन में कभी नहीं करना पड़ता। ऐसा कौन सा दुर्गुण है जिसको त्याग करके मनुष्य जीवन भर कभी शोक भाजन नहीं बनता, उसको दुख नहीं करना पड़ता। धर्मराज ने उत्तर दिया, यक्ष क्रोधम त्यक्त्वा न शोचती, जिसने क्रोध का त्याग कर दिया उसको कभी पछतावा करने की बारी नहीं आती। मनुष्य को क्रोध छोड़ देना चाहिए, हैंडल ऑल द थिंग्स विथ काम माइंड। क्रोध से किसी का भला नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वात पित्त और कफ इसमें क्रोध को स्थान दिया है, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अरे काम से भ्रामक क्यों न हो, कुछ सुख तो मिलता ही मिलता है, क्रोध से किसको सुख मिलता है। और जिसके मन में क्रोध होता है ना वो जलते ही रहता है, वो उसके भीतर एक भट्टाई है, क्रोध पित्त नित छाती जारा, क्रोध पित्त जैसा है, एसिडिटी जैसा, वो जलाते ही रहता है भीतर से। किन्न त्यक्त्वा न शोचति, क्रोधम त्यक्त्वा न शोचति, क्रोध का जो परित्याग कर देगा। देखो चिढ़ करके आप जीवन की जितनी समस्याओं को हल करना चाहेंगे उससे 10 गुना समस्याएं आपकी हल हो जाएगी यदि आपने केवल चिढ़ना बंद कर दिया। भगवद गीता में इसीलिए एक सुंदर बात आती है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह। सौम्यत्व, हैंडल थिंग्स सॉफ्टली, चिढ़ करके हाथ ऊपर करके चिल्ला करके सारा वातावरण भी बिगड़ता है, काम भी बिगड़ता है और अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। पछतावा हुआ शुक्राचार्य महाराज को, शुक्राचार्य महाराज ने कहा राजन अच्छा बात ऐसी है, आवेश में जो एक बात बोल दी जाती है ना उसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता तुरंत, बोल गए बोल गए। एक एक बात का, यदि आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, एक एक बात का एक फ्लो होता है, वो उस समय ही आती है आ जाती है, बाद में चाह करके भी वो आएगी ऐसा नहीं है। इस फ्लो को पकड़ना जिसने सीखा वह अपने जीवन के सब कामों में सफल हो सकता है। भगवद गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र में कही, बड़ी विलक्षण बात है महाभारत में, सारा युद्ध होने के पश्चात अर्जुन ने भगवान से कहा, केशव आपने वो उपदेश मुझे किया था कुछ तो ध्यान में रहा कुछ नहीं भी रहा, मैं एक बार दोबारा फिर से सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो समय गया, दैट इज फ्लो। अब वो एक बार तो बोल दिए, लेकिन शुक्राचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं राजन, अब मेरे तुरंत बोलने से तो कुछ नहीं होगा लेकिन मैं मेरे शाप को संशोधित तो कर सकता हूं। अरे भारत के संविधान में 50 साल में 100 बार यदि संशोधन किया जा सकता है तो शुक्राचार्य महाराज के शाप में एक बार करने में क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा वार्धक्य तो तुम्हें आ गया, तुम्हारे 5 पुत्रों में से जो पुत्र इस वार्धक्य का स्वेच्छा से स्वीकार करेगा उसका यौवन तुम्हें मिलेगा, जाओ। इसके पश्चात की पहली बात तो यह है कि महाराज ययाति ने अपने 5 पुत्रों से क्रमशः पूछा, बड़े पुत्र है यदु, यदु ने कहा पिताजी बाकी आपकी सारी बात ठीक है, मैं तो आपका भगत ही हूं लेकिन मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, बूढ़ा होना किसी को पसंद नहीं और बुढ़ापा आए बिना रहता नहीं। यदु ने नहीं कह दिया, त्रोसु ने नहीं कह दिया, अनु ने भी नहीं कहा, द्रुयु ने भी नहीं कहा, सबसे छोटा बेटा है पुरु, वो पुरु सामने आता है और पुरु ने कहा पिताजी आप चिंता मत कीजिएगा, आप अपना संकल्प कीजिए, मैं स्वेच्छा से मेरा यौवन आपको देने को तैयार। ययाति ने संकल्प किया और ययाति पुनर्युवा बन गए। ययाति ने इसके पश्चात अनेक वर्षों तक राज किया, गृहस्थाश्रम भी करते रहे, लेकिन इस गृहस्थाश्रम की अब एक विशेषता थी, देवयानी ने शर्मिष्ठा को प्रेम से अपना लिया। पहले दोनों का कलह था, कलह जीवन में हो भी जाता है कभी तो भी उसको डिसॉल्व करने की भी बात सोचा कीजिए। और ये बात जब हम सोचने लगते हैं ना तो वो हो जाती है। अब महाराज ययाति का गृहस्थाश्रम देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों के साथ सुखपूर्वक चला है
और ये भी दोनों सहेलियों के समान उसके साथ आपस में भी रहती है, उनके साथ भी रहती है। ययाति ने विचार किया, बस हो गया, अब मुझे विरक्त होकर के तपस्या करनी चाहिए और राज्य पुत्र को सौंप देना चाहिए। किस पुत्र को सौंपना चाहिए? श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे कि ययाति ने यदु को शाप दिया कि तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हो। महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है, महाभारत में पूरा वर्णन है कि ययाति महाराज ने प्रजा के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया। देखो ये गणराज्य हुआ करते थे, आपकी डेमोक्रेसी से तो बहुत अच्छी व्यवस्था महाभारतकालीन व्यवस्था रही है। ये गणराज्य हुआ करते थे और हर जाति के कुछ कुछ लोगों का उस समिति में समावेश होता था और ऐसे जो प्रभावी लोग हैं हर जाति के हर वर्ण के उनकी संसद बनती थी। उनकी संसद में ययाति ने यह बात रखी कि मेरी इच्छा है कि मेरा उत्तराधिकारी ये मेरा बड़ा बेटा नहीं बनेगा क्योंकि इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया है, आप सबका क्या मत है? और पूरी संसद ने एक मत से कहा है कि पिताजी की आज्ञा का पालन न करने वाला ये बेटा, इसको यदि पिता नहीं देना चाहते हैं अधिकार तो उसको अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। संसद की अनुमति लेकर के ययाति ने शाप दिया, यदु सुनो तुम्हें तो मेरे पश्चात सिंहासन पर बैठने का अधिकार है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाला कोई भी संसार के किसी भी सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं होगा, परमानेंट स्टे, ये परमानेंट स्टे लगा दिया। आगे चल करके हम देखते हैं इन्हीं महाराज यदु के वंश में जिसको यादव कुल कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी सिंहासन पर बैठ करके अपना राज्याभिषेक नहीं करा है। वे करवा सकते थे लेकिन पूर्वजों की मर्यादा का पालन उन्होंने किया। हमारे देश में मर्यादा का और परंपरा का पालन करने वालों की प्रतिष्ठा है। पूज्य स्वामी कृपाती जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इनके वांग्मय में कभी आपने ये पढ़ा है क्या ये हमारा मत है ये मेरा कहना है? वो यही कहेंगे कि ये शास्त्र का मत है, वेदांत शास्त्र ये कहता है। और आजकल जिनके अकल इतनी थोड़ी होती है वो मिलकर के फ्री थिंकर बन जाते हैं। हमारे यहां शास्त्र निष्ठा को महत्व दिया गया, परंपरा को महत्व दिया गया और जो भी बोलने वाला होता वो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के सामने नतमस्तक होकर के बोलता। ये जो अपारंपरिक अध्यात्म हमारे देश में आ गया ना, ये भी एक बड़ी मुसीबत है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। जो अच्छा लगता है वो पुराना है और जो नया है वो अच्छा नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा, ज्यादा विस्तार नहीं करता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण परंपरा का पालन करते हैं और सिंहासन पर बैठते नहीं है। मार्गाधारे वर्तावे विश्व हे मुहरे लवावे अलौकिका नोहावे लोकाप्रति। उत्तम सत्पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी अलौकिकता का उपयोग ध्वंस के लिए नहीं करें, वे परंपराओं के पालन के लिए करें। राज्य मिला है छोटे पुत्र महाराज पुरु को, पुरु का राज्याभिषेक हुआ। ययाति दोनों पत्नियों के साथ वन में तपस्या करने के लिए गए। थोड़ा सा इतना और भी आप सुन लीजिएगा, महाराज ययाति के ऊपर लिखते समय हमारे आधुनिक साहित्यिकों ने उनको लंपट पुरुष कहा है, जो बात घिनौनी है और गलत बात है। ययाति लंपट पुरुष नहीं है, अरे भीष्माचार्य महाराज जैसे श्रेष्ठ लोग उनका वर्णन पुण्य श्लोक के रूप में करते हैं। हमारे देश में इतना झूठ बोलते हैं साहित्यिक। ययाति महाराज पुण्यात्मा थे, पुण्य अपने पुण्य के बल पर वे स्वर्ग में गए, वर्णन ऐसा है।
स्वर्ग में उनको देवराज इंद्र के समीप का स्थान मिला, ये उनके पुण्य का प्रभाव था। अब देवराज इंद्र को अच्छा लगा नहीं कि ये मृत्यु लोक का एक आदमी आकर के मेरे पास बैठ जाए, फीलिंग अनइजी, क्या करना। लेकिन उसका पुण्य है, पुण्य के बल पर आकर के बैठा है। देवराज इंद्र चालाक है, देवराज इंद्र ने कहा ओ आइए आइए पधारी पधारी बैठिए। और फिर रोज बैठते बैठते देवराज उनसे पूछने लगे, धन्य है भाई, कोई तो यहां पर आकर के बैठ नहीं सका, पता नहीं कितना पुण्य आपने किया होगा, धन्य है आपके पुण्य की, क्या क्या किया था जी आपने। भोले भाले ययाति, ये इंडियन लोगों जैसे, हमारे देश के लोग इंटरनेशनल राजनीति में भोले भाले ये सब, दे डोंट हैव एनी स्मार्टनेस, नो करेज, नो ब्रेवरी। एक में है, अब उनको नेता बनाना आपका काम है। लेट अस ड्रीम हाई। ययाति को पास में बैठा करके इंद्र ने पूछा, ययाति भोले भाले, मैंने ऐसा किया फिर वैसा किया। अच्छा अच्छा, और क्या किया? और ऐसा भी किया वैसा भी किया। तो एक एक बात इंद्र पूछते गए, इंद्र पूछते गए, और जैसी अंतिम बात ययाति ने बतला दी, सारे पुण्य की सूची समाप्त हो गई। देवराज इंद्र ने हाथ पकड़ा और कहा गेट आउट, ये स्वर्ग है, पुण्य के बल पर यहां पर तब तक रहा जाता है जब तक पुण्य का नाश नहीं होता। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए था कि अपने मुख से अपना पुण्य बोलने से पुण्य का नाश होता है। तुम्हारे पुण्य का नाश हो चुका, अब तुम यहां पर रह नहीं सकते, अब तुम्हें गिरना है पुनः मृत्यु लोक में। इंद्र ने धोखा दिया ययाति को। बस एक बात और हुई, इंद्र ने कहा इतना मैं कर सकता हूं, मृत्यु लोक में तो तुम्हारा जाना तय है, इतना मैं कर सकता हूं, तुम्हें जन्म कहां लेना है बोलो, जहां जन्म लेना चाहोगे वहां पर मैं भेज सकता हूं। क्या उत्तर दिया ययाति ने? ययाति ने कहा कोई बात नहीं देवराज, यदि मेरे पुण्य के क्षय के कारण मुझे मृत्यु लोक में पुनः जाना पड़ना है तो मुझे भारतवर्ष में संतों की मंडली जहां पर हो वहां पर जन्म दे दो, मेरा उद्धार अपने आप पुनः हो जाएगा। भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
जय तू विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। भारत के
विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो।
भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
जय तू विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। भारत के संतों
जय तु विवेकानंद स्वामी
भारत माता जय हो।
भारत के संतों की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।
जय तु विवेकानंद स्वामी भारत माता 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 जय हो।
भारत के
भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो। विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
जय तु विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
जय तु विवेकानंद स्वामी भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
जय तु विवेकानंद स्वामी भारत माता 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 जय हो।
भारत के संतों की जय हो।
भारत के संतों की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो।
भारत माता जय हो।
भारत माता जय हो।
भारत माता जय हो।
भारत माता जय हो।
स्वर्ग से महाराज ययाति का पतन तो हुआ। उत्तम साधन करने वाले संतों में वे गिरे और वहां पर पुनः साधन करके ययाति महाराज अपने पुनः प्राप्त पुण्य के बल पर स्वर्ग में जाकर के पहुंचे। महाराज ययाति को पुण्य श्लोक कहा है भीष्म ने। यह अत्यंत पुरुषार्थी जीवन है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं मुनीश्वरों सिंहासन पर महाराज पुरु विराजे। महाराज पुरु का वंश आगे चला। इस वंश में आगे चल करके उत्तमोत्तम राजाओं का जन्म हुआ। उनमें एक महाराज कुरु का भी जन्म हुआ। ये कुरु इन्होंने ही कुरुक्षेत्र विभाग का अत्यंत उत्तम विकास किया, इसलिए उसको नाम कुरुक्षेत्र मिल गया। और इस वंश का भी नाम कौरव या कुरुवंश हो गया। जैसे सूर्यवंश में वास्तव में वो वंश है सूर्यवंश, इक्ष्वाकु प्रतापी हुए तो आगे वह वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया, लेकिन उसके पश्चात महाराज रघु सर्वाधिक प्रतापी हुए तो वह वंश रघुवंश कहलाया। भगवान श्री राम भी अपने को रघुवंशी कहलाने में गौरव मानते हैं। बड़े बड़े लोग जो अत्यंत प्रभावी है किसी वंश में होते हैं, अपने आप ही वह वंश उनके नाम से मंडित हो जाता है। महाराज कुरु के नाम से यह वंश मंडित, इसीलिए तो भगवान भगवद्गीता में भी कुरुनंदन अर्जुन को कुरुनंदन कहते हैं, यह कुरुवंश कहलाया। इसी में आगे चल करके एक अत्यंत श्रेष्ठ राजा का जन्म हुआ जिनका नाम है दुष्यंत। दुष्यंत बड़े प्रतापी राजा थे और महाराज दुष्यंत के राज्य में सारी प्रजा सुखी है, व्यवस्थित है। महाराज दुष्यंत की कहानी कहना चाहने पर भी विस्तार से कहने का समय नहीं है, लेकिन यह सारी अत्यंत अद्भुत कथा है और विलक्षण इतनी कथा यह कि महाकवि कालिदास को भी इस विषय को लेकर के लिखने का मन हुआ और संसार का सर्वोत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास ने इन्हीं 8 अध्यायों को लेकर के लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, महाभारत के प्रसंगों को लेकर के हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यिकों ने इतना विपुल लेखन किया है, इसलिए महाभारत उपजीव्य ग्रंथ कहलाता है और बाकी सब उपजीवक कहलाते हैं। कितने सारे एपिसोड्स, कितने सारे प्रसंग सारे महाभारत से लिए हैं लोगों ने। संपूर्ण देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं में विपुल साहित्य, जैसे उन लोगों ने क्या किया, सब ने क्या किया। जैसे हम लोग आजकल नर्सरी चलाते हैं और नर्सरी में कोई पौधे लगाते हैं और लोग जाकर के अच्छा पौधा देखते हैं। अब नर्सरी में तो हजारों पौधे हैं, एक अच्छा पौधा देखा, 4-6 पौधे देखे, उनको लेकर के हम आ जाते हैं और अपनी वाटिका में उनको लगा करके उनका विकास करते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज की यह महाभारत कृति साहित्यिकों के लिए सबसे बड़ी नर्सरी है। जितना भगवान वेदव्यास जी से प्लॉट्स लेकर के साहित्यिकों ने लिखा है उतना क्रेडिट अन्य किसी को भी नहीं जाता है। वेदव्यास जी के महाभारत के एक एक प्रसंग को लेकर के लोगों ने बड़े बड़े नाटक लिख दिए, बड़े बड़े महाकाव्य लिख दिए, कितने प्रसंग लिख दिए, सारी प्रादेशिक भाषाओं में आपको मिलेगा। महाकवि कालिदास भी यहां से सारा माल मसाला लेकर के और अभिज्ञान शाकुंतल की रचना करते हैं। दोनों को मिलाकर के थोड़ा सा देखेंगे। महाराज दुष्यंत एक बार मृगया के वन में जाते हैं और लौटते समय वे एक आश्रम से जब गुजर रहे हैं तो अपने सारथी से उनका, अरे सूत जरा रोको, ये महर्षि कर्ण का आश्रम है, दर्शन करके आते हैं। मंदिरों की भगवत प्रतिमाओं का दर्शन, संतों का दर्शन, तीर्थों का स्नान, ये सारी बातें अकारण भी करनी चाहिए। ये जितनी जितनी अपने जीवन में होती है उतना उतना अपने आप अपने पाप का अक्षय और पुण्य का संवर्धन होता है। और इसलिए हमारे यहां पर ये दर्शनों की परंपरा है। महाराज दुष्यंत ने सारथी से कहा, रोक दिया गया। देखो कालिदास की एक विशेषता है, भारतीय संस्कृति की छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए कालिदास जैसा अन्य कोई नहीं मिलेगा। रथ को बाहर रोका, रथ को आश्रम में नहीं ले गए।
वाहन में बैठकर के भगवान के दर्शन के लिए बड़े शहर में जाना भी पड़े तो भी एकदम भगवान के मंदिर के सामने जाकर के वाहन को नहीं रोकना, थोड़ा सा अंतर पर रोकना चाहिए। मंदिर में जाकर के दर्शन करने का फल पूर्ण उसको मिलता है जो वाहन में न बैठ करके जाता है, पग में पगरखी भी नहीं धारण करता है, थोड़ा तो भी कुछ कदम तो भी ऐसे जाना आवश्यक है। ये मर्यादाएं हैं। इतना ही नहीं, जब महाराज दुष्यंत रथ में से उतरने के समय अपने शस्त्र अस्त्रों को वहां रख दिए और अलंकारों को उतारने लगे, भारी भारी अलंकार, राजा थे, सम्राट थे, तो सूत ने कहा ये आप क्यों उतारते हैं? महाराज दुष्यंत ने उत्तर दिया, याद रखने जैसा उत्तर है, कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्तम भाष्यकार हैं। महाराज दुष्यंत ने उत्तर दिया, सूत, अरे सारथी, मैं आश्रम में जा रहा हूं, किसी भी तपोवन में जाते समय अपना वेश सभ्य, शालीन और सादा होना चाहिए। सभ्य, शालीन और सादा वेश धारण करके ही तपोवन में जाया जाता है, मंदिर में जाया जाता है। सूत, उनका वाक्य है, सूत विनीत वेशे न प्रवेशव्यानि तपोवनानि नाम। विनीत वेश, कितनी सादी बात है, एक शब्द में कितना कह दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे कैसे कपड़े पहनने की आज फैशन हो गई, वो जहां ठीक है वहां ठीक है, लेकिन मंदिरों में, तीर्थों में, महात्माओं के पास, कथा प्रसंगों में, सत्संगों में जाते समय हमारा वेश कैसा होना चाहिए, ये एक विवेक की बात है। दुष्यंत उस आश्रम में, महर्षि कर्णमुनि के आश्रम में, जो मालिनी नदी के तट पर रहा, वहां पर गए और अब उतनी ही कथा मैं आपको चार पांच घंटे बतला सकता हूं, पूरा शाकुंतल ही बोलना पड़ेगा, इतना बतला देता हूं जरूर कि जिन्होंने जीवन में संस्कृत भाषा को सीखा नहीं, दे हैव मिस्ड अ लॉट, मच मच दे हैव मिस्ड। सारे संसार की भाषाओं में इतनी मधुर और इतनी सुंदर भाषा अन्य तो मुझे लगती नहीं है। अंग्रेजी को मैंने ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन मैं किसी भाषा से उतना प्रेम नहीं कर सका जितना प्रेम मेरा संस्कृत भाषा से प्रारंभ से रहा है। ये देव भाषा है। फिर हो गया मराठी भाषा से, वो इसलिए हो गया कि वो ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा है, लेकिन मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, दुनिया भर की सब है, इन सब की मां तो संस्कृत है। किसी भी कथा के आयोजन में प्रत्येक सत्र में आरंभ में एक स्तोत्र बोलने की पद्धति आरंभ से मैंने इसलिए रखी कि और कुछ नहीं पढ़े तो भी लोग कम से कम यहां पर दो तीन स्तोत्र सीख करके जाए तो उनके घर में भी उन स्तोत्रों के माध्यम से कुछ संस्कृत का अंश पहुंचेगा। कालिदास ने वहां पर, दुष्यंत ने प्रवेश किया। अब यहां पर कालिदास का लिखा हुआ कुछ और ढंग का है, बड़ा साहित्यिक है, बहुत सुंदर है, उसको दूर रखते हैं। जाकर के जैसे दुष्यंत ने पूछा है, महर्षि कण्व के आश्रम में उनकी कुटिया के बाहर वे खड़े हैं और आवाज दी है, तो महर्षि कण्व तो आए नहीं और एक अत्यंत विलक्षण युवती बाहर आती है, उसने महाराज दुष्यंत से पूछा आप पिताजी से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इस समय बाहर गए हैं, आपका आतिथ्य मैं कर सकती हूं? दुष्यंत ने कहा कि कर्म महर्षि को आपने पिताजी कैसे कहा? मैंने तो यह सुना था कि कर्म महर्षि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो उस
कन्या ने कहा आपकी बात ठीक है लेकिन मेरी भी बात ठीक है। वे मेरे जन्मदाता पिता न होने पर भी वे ही मेरे पिता है, मैं उनकी मानस कन्या हूं। दुष्यंत ने कहा फिर आप कन्या किसकी है? बात बड़ी, उसने कहा मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसे तपस्वी यहां पर कोई आए थे और महर्षि कण्व ने, पिताजी ने जब मेरी ओर उंगली दिखा करके कहा कि ये मेरी बिटिया है, तो उन्होंने पूछा था आपकी बेटी कैसे हो सकती है। तब पिताजी ने उनको जो बताया वो मैंने दरवाजे के पीछे से खड़े खड़े होकर के सुना, वो जानकारी मैं आपको दे सकती हूं। और वो जानकारी क्या थी? विश्वामित्र महर्षि ने तपस्या की, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या अपने आप में एक अद्भुत प्रकरण है और इसका सर्वोत्तम वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में। देखो मैं सारी प्रादेशिक भाषाओं के सारे ग्रंथों का भी आदर करता हूं, लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण और मूल महाभारत इनका अध्ययन राष्ट्र की उन्नति के लिए और हमारी धारणाएं व्यवस्थित रहने के लिए आवश्यक है, ये मेरी मान्यता है। वाल्मीकि रामकथा में विस्तार से और महाभारत में संक्षेप में विश्वामित्र महर्षि की तपस्या का वर्णन आया है। अब इस तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा। विश्वामित्र महर्षि एकाएक मेनका के वश नहीं हुए। मेनका को विश्वामित्र को वश करने में 10 वर्ष लगे, ऐसा सीधा वर्णन है वाल्मीकि में। लेकिन आखिर एक संवेदनशील क्षण में विश्वामित्र महर्षि का तपोभंग हुआ और मेनका को एक कन्या प्राप्त हुई। विश्वामित्र महर्षि को इस तपोभंग के कारण बड़ी ग्लानि हुई और वे स्वयं उस स्थान को त्याग करके अन्यत्र चले गए। मेनका का काम तो पूरा हो गया था, मेनका को खाली इंद्र ने भेजा था महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए ही। तो वो जो नवजात कन्या थी उस कन्या को वन में एक पेड़ के नीचे छोड़ करके मेनका चली गई। अब मेनका जब चली गई, अब वह अत्यंत शैशवावस्था की वह कन्या, नवजात लगभग कन्या, एक दिन महर्षि कर्म के शिष्य दौड़े दौड़े आकर के बतलाते हैं कि वहां पर एक कोई छोटी सी ना। महर्षि कर्म जब मारिणी नदी के ऊपर स्नान के लिए चलते हैं तो उस समय कुछ पंछी महर्षि कण्व के समीप आकर के ची 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 करते हैं। पूरा जीवन महर्षि कण्व का इन पंछियों के साथ और वन्य पशुओं के साथ बीता है, तो उनको पता है कि ये कुछ है, कुछ मुझे बतलाना चाहते हैं। उन पंछियों के पीछे पीछे महर्षि कण्व चलते गए और जहां पर जाकर के वे पंछी रुक गए, वहां देखा सामने चारों ओर से पंछियों का एक जमावड़ा था और ये सारे पंछी एक छोटी सी बच्ची को घेर करके बैठे थे, कहीं उसको कोई क्षति न पहुंच जाए। इसलिए प्राणी पशु भी कितने समझदार होते हैं। गुरुवायुर के एक हाथी की कथा बतलाने के आपको जो मोह होता है, लेकिन चलो, एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए एक हाथी, इतना बड़ा हाथी जो पैर के नीचे आ गया, सांस रोक करके हाथी खड़ा हो गया बिना हिले डुले, क्योंकि वो पिछले पैर के नीचे आया। हाथी के ध्यान में आ गया कि मैं थोड़ी भी हलचल करूंगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। उस हाथी की फोटो गुरुवायुर के मंदिर में लगी है केरल में। ये तो अभी अभी की घटना है, 30 साल पहले की।
उन सारे पंछियों ने एक कन्या को अपने पंखों से ढक रखा है, छाया दे रहे हैं। जैसे ही कण्व महर्षि वहां पर जाकर के पहुंचे, सारे पंछी हट गए। कण्व महर्षि ने उस कन्या को देखा, ओ शकुंतला, शकुंतला ये नामकरण उन्होंने नहीं किया है उस समय, लेकिन शकुंत ही लालिता इति शकुंतला, पंछियों ने जिसका पालन किया, पंछियों ने जिसका संरक्षण किया। उन पंछियों के हाथ में तो इतना ही था कि ये मानवीय बालिका है, इसका बहुत दिनों तक रक्षण हम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक कोई तो भी इसका संरक्षण करने वाला मनुष्य यहां पर न आ जाए, इसको संभाल लेना चाहिए। पंछियों ने उसको संभाला और पंछियों के संभाल के कारण ही उसका नाम शकुंतला हो गया। महर्षि कण्व उस शकुंतला को अपनी कुटिया पर ले आते हैं और अपनी कन्या के रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। अत्यंत लाडली, अतीव लावण्यवती यह भगवती शकुंतला बतलाती है कि इस प्रकार मेरे पिताजी विश्वामित्र महर्षि और मेरी मां मेनका रही है, महाराज दुष्यंत के मन में एकदम विचार आया, अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ? अरे ऋषि की कन्या होती तो मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता था। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मना असंशयम। कालिदास ने तो लिखा है, शकुंतला को देखते ही दुष्यंत के मन में विचार आ गया था कि ये ऋषि कन्या हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसको देख करके मेरे मन में थोड़ा सा और विचार आ गया विवाह करने का। ऋषि कन्या होती तो इसके बारे में मेरे मन में ऐसा विचार आना ही संभव नहीं था। चलो, दुष्यंत ने स्वयं अपनी ओर से शकुंतला के सामने गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने, दुष्यंत ने यह भी समझाया कि महर्षि को इसमें आपत्ति होगी नहीं, क्योंकि तुम क्षत्रिय कन्या हो। शकुंतला ने सीधी बात कह दी, माताएं सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का विचार करती है, करना भी चाहिए। उसने कहा, देखो, मुझे होने वाला पुत्र आपका उत्तराधिकारी होता हो तो यह गांधर्व विवाह मैं कर सकती हूं। उनका गांधर्व विवाह हुआ, दुष्यंत का वहां पर कुछ रुकना हुआ, उसके पश्चात दुष्यंत वहां से चल दिए। जाते समय शकुंतला से दुष्यंत ने कहा, शकुंतला ने कहा, पिताजी के आने तक रुकिए ना, मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। दुष्यंत ने कहा, वाह, तुम्हें ऐसे ले जाऊंगा मैं? अरे, एक सम्राट की पत्नी हो तुम, इसलिए मैं जाकर के तुम्हारे लिए शिविका भेजूंगा और सैनिक आवेंगे और ठाठ बात के साथ तुम्हें ले जाएंगे। भोली भाली शकुंतला उसने दुष्यंत के बात का विश्वास कर लिया। दुष्यंत तो गए, शकुंतला के मन में डर था कि पिताजी को क्या लगेगा। महर्षि कण्व जब आए, शकुंतला बड़ी संकोच कर रही थी। कण्व महर्षि ने कहा, बिटिया मेरे सामने आ, मेरा तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद है, तुमने योग्य पति का चयन किया। ये सुनते ही उसके भार, उसका छाती का भार ही समाप्त हो गया। बिटिया, वैसे भी मुझे तुम्हारे लिए योग्य पति की तलाश तो करनी थी, महाराज दुष्यंत से बड़ा कौन हो सकता है, मेरे आशीर्वाद है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, शकुंतला कड़वाश्रम में है, उसके गर्भ रहा है और यह गर्भ उसके उदर में 3 वर्षों तक रहा है।
तीन वर्ष के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ। शकुंतला मानिनी है। महर्षि कण्व चाहते हैं कि वो अपने पति के यहां चली जाए। शकुंतला ने कहा, पिताजी जब वो मुझे बोल करके गए हैं कि मैं तुम्हें लिवा लाने के लिए बड़ा लवादमा भेजूंगा, कम से कम किसे तो भेजे, ले जाने की व्यवस्था वो तो करे, मैं चला करके कैसे जा सकती हूं। उसकी बात उसके स्थान पर ठीक थी, वो माननी थी, वैसे गलत भी नहीं था। जिस बालक का जन्म हुआ वो बालक बड़ा विलक्षण था। ये बालक कैसा है, आगे चलकर के इसका नाम भरत हुआ, लेकिन शैशवावस्था में ये बालक गर्भम सुषाव वामोरु कुमारम अमितौजसम त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु दौष्यन्तिम जनमे जय जात कर्मादि संस्कारं कण्व पुण्यकृतां वरः विधिवत् कारयामास वर्धमानस्य धीमतः षड् वर्ष एव बालस्य कण्वाश्रम पदं प्रति। ये छोटा बालक इतना बलवान, इतना निर्भय और इतना आकर्षक था कि ये जहां चला जाए वहां का वातावरण बदल जाता था। ये कितना निर्भय था तो ये स्वयं वन्य घूमता हुआ सिंह व्याघ्रान वराहांश्च महिषांश्च गजांश्च तथा बबंध वृक्षे बलवान आश्रमस्य समीपतः। आश्रम में तो रुकता ही नहीं था, भागता दौड़ता वन में जाता था, और कभी किसी सिंह को पकड़ करके लाया, कभी किसी बाघ को पकड़ करके लाया। अच्छा, इसके प्रेम के कारण, इसके निर्भयता के कारण, देखो ये श्वापद है ना, ये श्वापद भी बहुत समझदार होते हैं, और जो उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहेगा उसके साथ उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है। और छोटे बालकों को देख करके तो उनके मन में भी बड़ा प्रेम उमड़ता था, शिव को पकड़ करके लाता आश्रम में। अब ये छोटा सा बालक सिंह को पकड़ के लाया है, और केवल लाया नहीं, अब उसको देख करके सारे आश्रमवासी इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे, ये काय को पकड़ करके लाया है यहां पर, और ये क्या करता है, ए सिंह भैया जबड़ा खोलो ना, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं ना। जृंबस्व सिंह दंतास्ते गणेश, जृंबस्व जबड़ा खोलो, दांत गिनने हैं। दूर खड़े खड़े सारे आश्रमवासी देखा करते थे पसीने से तर, और ये इस बालक का नाम उन्होंने कर दिया सर्वदमन। ये सभी का दमन करता है, कभी हाथी को पकड़ करके लाता है और उसके पीछे पीछे हाथी भी चले आते हैं, हाथी इसको अपनी सूंड में उठा करके और पीठ के गंडस्थल के ऊपर बैठा लेते हैं, इसको लाड़ लड़ाते हैं, इसको गिरने देते नहीं है। सिंह व्याघ्रान वराहांश्च महिषांश्च गजांश्च तथा बबंध वृक्षे, और फिर सबसे कहता क्या आप डरते क्या है, इसको बांधूं, रस्सी लेकर के किसी को बांध देता, बन जाते ये शापत भी उसके प्रेम के कारण, उसकी निर्भयता के कारण, उसकी निरागसता के निष्पापता के कारण। आश्रमवासियों ने उसका नाम रखा है सर्वदमन। आगे उसका नाम भरत कैसे हुआ ये तो देखेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि इस देश का नाम भारत जिसके नाम से हुआ वो जन्म से इतना पराक्रमी था। हमारा देश मूल में पराक्रमी देश रहा है, निरंतर पराक्रमी देश रहा है, और आज यदि हमने कुछ खोया, इस देश में आज भी संपत्ति खूब है, इस देश में आज भी युवक अत्यंत बुद्धिमान है, परिश्रमशील है, इस देश का नेतृत्व शौर्यहीन नेतृत्व हो गया। भगवान भगवद्गीता में
क्षत्रियों का पहला गुण बतलाते शौ शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। एक में कोई शौर्य रहा नहीं, बहुत अपेक्षाएं थी हम लोगों को, कम से कम महाराष्ट्र से जाने वाले तो भी कुछ शौर्य दिखाएंगे। नेतृत्व के घटिया होने से सारा राष्ट्र ही घटिया हो जाता है, ध्यान रखना। और नेतृत्व ऊर्जस्वल होता है तो सारा राष्ट्र महानता की ओर अग्रसर होता है। यह महाभारत का सिद्धांत है। 3 सालों में महाभारत में यह श्लोक आया है, कालो वा कारणम राज्याम राजा वा काल कारणम इति ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन तो आवश्यक ही है यदि बचना चाहते हैं और अगली पीढ़ी के बालकों को बचाना चाहते हैं तो आज ही जागो। भगवान वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं, सर्वजीवन बड़ा होता रहा, उसके सारे संस्कार उपनयनादिक संस्कार भी महर्षि कण्व ने किए। आखिर महर्षि कण्व ने कहा, बेटा पति के सामने पत्नी को, गुरु के सामने शिष्य को, पिता के सामने पुत्र को इतना अड़ करके नहीं रहना चाहिए। तुम बात को समझो, आना चाहिए था दुष्यंत को, किसी को भेजना चाहिए था, लेकिन चला करके जाने में भी अपने को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और शकुंतला का अब वहां से विदा होना निश्चित हुआ। कालिदास ने शाकुंतल के 7 अंकों में सर्वोत्तम अंक जो लिखा है वो ये है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। सारे साहित्य में नाटक सर्वोत्तम होता है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, अभिज्ञान शाकुंतल के भी 7 अंकों में 4वां अंक सर्वश्रेष्ठ है और उस 4वें अंक में भी 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। चारों को बतलाने इतना समय नहीं होगा तो भी 1-2 तो आपके सामने मुझे बतलाने ही चाहिए। यह प्रसंग है कर्माश्रम से शकुंतला की विदाई का, राधे राधे गोविंद बोलो रे,
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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो,
गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो,
गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद बोलो रे,
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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो,
गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो,
శకుంతలేతి హృదయం సంస్పృష్టముత్కంఠయా కంఠాస్తంభితబాష్పవృత్తి కలుషః చింతాజడం దర్శనం వైక్లవ్యం మమయావదీదృశమహో స్నేహాదరణ్యౌకసః పీడ్యంతే గృహిణః కథన్ను తనయా విశ్లేష దుఃఖైర్నవై. ప్రాతకాల కి బేలా హై, సూర్య భగవాన్ అభి ఉగ్ రహే హై. మహర్షి కణవ అప్ని కుటియా కే బాహర్ टहलते हुए अपने मन में सोच रहे हैं, आज मुझे क्या हो गया, मेरी आंखें क्यों भीग रही है, मेरा गला अवरुद्ध क्यों हो गया, आज मेरी छाती में क्या हो रहा है, अरे आज मेरी बिटिया चली जाएगी. भारतीय परंपरा में बेटी की विदाई यह सबसे अद्भुत प्रसंग है. बड़ी विलक्षण बात यह है, एक पिता अपनी एक कन्या के लिए क्या क्या नहीं करता. देखो माताएं मुझे क्षमा करेगी, लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में सबसे निस्वार्थ प्रेम होता है मां का, है ना. मैं भी मान लेता हूं आपकी बात, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन तत्वतः यह सत्य है. क्या देखो, मां के प्रेम में भी सातवें पर्दे के भीतर तो भी कुछ तो भी एक आशा अपेक्षा होती है. बुढ़ापे में काम आएगा. एक बुढ़िया अम्मा अपने बेटे का गुणगान, अब गुणगान आप समझते हैं क्या है, बहुत ज्यादा करती करती एकदम चिढ़ भी रही थी, रो भी रही थी, इतना बेकार ऐसा. मैंने कहा तो छोड़ दो ना, अपना हरिद्वार में है वृद्धाश्रम, चलो उसके साथ कोई संबंध मत रखो. उसने एकदम कहा, महाराज कैसे छोड़ दे, मरने के समय पानी तो आखिर वही पिलाएगा। मां का प्रेम पुत्र के प्रति, कन्याओं के प्रति जो कुछ है अत्यंत श्रेष्ठ है। मातृ प्रेम को प्रणाम। थोड़ा विचार ये करना है, उससे भी अधिक निस्वार्थ प्रेम आपको कहां मिलेगा। एक पिता का जो अपनी बेटी के साथ प्रेम होता है ना, इतना निस्वार्थ प्रेम आपको संसार में और कोई नहीं मिल सकता जो पिता का बेटी के साथ है। क्योंकि पिता को बेटी के लिए जीवन भर में कुछ करते ही रहना पड़ता है, जीवन भर करता है। बिटिया का जन्म हुआ, उसका लाड़ प्यार हुआ, उसकी शिक्षा हुई, उसकी फैशन हुई, उसका घूमना हुआ, टहलना हुआ, लाड़ लड़ाना सब कुछ हो गया। पिताजी सब करते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। उसके लिए क्या नहीं करते हैं? प्रश्न यह है कि वे उससे क्या चाहते हैं, उस बिटिया से उनका क्या लाभ होना है। लाभ की दृष्टि से सर्वदा पिता शून्य होता है। पिता बेटी से लाभ चाह सकता ही नहीं, न शारीरिक सुख न आर्थिक सुख। बेटी का एक ढेला भी अपने घर में रह जाना हमारे पूर्वज बड़ा पाप मानते थे। पारंपरिक लोग तो बेटी के विवाह के पश्चात भी उसके घर पर जाने के बाद भी उसका पानी भी नहीं पीते थे। और यह बात तत्वतः गलत नहीं थी, उसका अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तत्वतः हमारे धर्मशास्त्र ने यह कहा और हमारे अनुभव में यह है कि एक पिता मन खोल करके पूरी लगन के साथ बेटी के लिए सब कुछ करता है और इतना संभाल संभाल करके उसका संगोपन करने के पश्चात एक दिन वह उसके लिए अच्छा, उसको अच्छा घर वर मिले। पिताजी कितनी खोज करते हैं और सब खोजने के पश्चात जो उसको प्रदान कर देते हैं, पिता का अंतकरण भर आता है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। कितना सुंदर शब्द प्रयोग कालिदास ने किया। एक पिता एक कन्या को अपने पास केवल एक पराये की अत्यंत पवित्र धरोहर मेरे पास रखी है, इस प्रकार को संभालते। धरोहर भगवान ने इसके पति को कहीं न कहीं जन्म दिया है, मुझे उसको ढूंढना है और विष्णु रूपी ने वराय मेरी लक्ष्मी रूपी कन्या को अर्पण करके मुझे जीवन का समाधान प्राप्त करना। बेटी ने कमाया, बाप ले नहीं सकता। पारंपरिक पिता तो उसका विचार नहीं कर सकते। हमारे यहां पर स्त्री धन, एक कन्या को दिया हुआ धन, उसमें से छराम वापिस ये परिवार उपयोग में लावे, ये मान्य नहीं था। विशुद्ध निरपेक्ष प्रेम पिता का होता है कन्या से, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं। मां के प्रेम में सातवें पर्दे के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर इतना सा तो निस्वार्थ होता है। बुढ़ापे में काम देगा, यही संभालेगा, मरने पर यही पानी पिलाएगा, कुछ न कुछ तो आशा अपेक्षा है। कन्या से पिता को कोई स्वार्थ नहीं और पिता कन्या के लिए क्या करता नहीं। देखो केवल शास्त्रों के सिद्धांतों को मत जानो, मानवीय संवेदनाओं को भी जानो। आज मनुष्य लूखा होता जा रहा है। यह लूखापन आपको दुखी करेगा। संपत्ति से सुख नहीं मिलेगा, सुख इन संवेदनाओं से मिलेगा, स्नेह से मिलेगा, इसलिए इनका रक्षण होना चाहिए। महर्षि कर्म ने तो उस शकुंतला को अपनी बेटी माना हुआ है। महर्षि कर्म विचार ये करते हैं कि अरे जिसको केवल मैंने बेटी के रूप में माना और पालन पोषण किया, उससे मेरा मन इतना जुड़ गया कि उसका जाना मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे कोई सांसारिक भावनाएं नहीं है, फिर भी ये मेरी बिटिया शकुंतला जा रही है, मुझे क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा है उस स्थान पर कर्म महर्षि ने। उन लोगों का क्या होता होगा जो कन्या को जन्म देते हैं, जो उनका संगोपन करते हैं और जो उसे प्रेम से विवाह करके उसको विदा करते हैं। यास्य शकुंतले हृदय संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम यावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिण कथन्नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। इतने में शकुंतला और वह छोटा सर्वदमन आया। सारी सखियां और आश्रमस्थ लोग इकट्ठे हो गए। इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा मृग हिरण का बच्चा वो आकर के शकुंतला का पल्ला खींचने लगा अपने मुख से। कण्व ने कहा, शकुंतले पता है ये तुम्हें कह रहा है कि बहना मत जाओ, इसके मुख में तीखी घास के कारण घाव हो गए थे, उस समय तुमने इंगुदी पेड़ का तेल लगा करके उसको ठीक किया था, तुमने इसको इतना संभाला, इतना प्रेम दिया, इसलिए ये कह रहा है कि तुम नहीं जाओ। वो पल्ला पकड़ करके खींच रहा है। शकुंतला तुरंत उसको अपने पास लेती है। भागवत में भगवान का बछड़ों के साथ, गोमाताओं के साथ प्रेम क्या है देखो। भगवान रामभद्र का क्या प्रेम है अश्वों के साथ। श्रृंगवेरपुर के प्रसंग में अश्वों के साथ भगवान ने जो व्यवहार किया है जरा देखो। महर्षि कर्म ने चारों ओर देख करके कहा, उन वृक्षों की ओर देख करके कहा, उन लताओं की ओर देख करके कहा, उन छोटे छोटे पौधों की ओर देख करके कहा जिनके ऊपर फूल खिले थे। महर्षि कर्म कहते हैं, अरे भाइयों, आज अपनी बिटिया जा रही, कैसी है वो? पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्व पीतेषु या। प्रातःकाल में उठते ही आपको पानी पिलाए बिना, पौधों को पानी पिलाए बिना जो कभी जल भी नहीं पीती थी। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्व पीतेषु या नादते प्रिय मंडना। भवताम स्नेहे नया पल्लवम। वैसे भी लड़कियों को फूल अच्छे लगते हैं और वो अपने को सजाने के लिए मिल जाए तो कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन कण्व महर्षि कहते हैं आपके ऊपर के फूलों को ये कभी निकालती उतारती नहीं थी। प्रियमंडन आप ही, उसको सजना अच्छा लगता है और सजी हुई वो दिखती भी बहुत अच्छी है, लेकिन तब भी वो यही कहती है नहीं, उन फूलों को मत उतारो, वे वहीं पर अच्छे हैं। नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः। कुसुम प्रसूति समये जब किसी भी पेड़ में पौधे में सबसे पहले कलियां खिलने लगती थी, थोड़ी थोड़ी पहली बार कलियां खिलने लगी किसी पौधे के ऊपर, तो दौड़ती आती थी, पिताजी पिताजी चल करके देखिए ना, उस पौधे पर आज कलियां खिल रही है। जो पौधे उसको पौधे नहीं लगते थे। प्रेमवदा ने कहा चलो जल्दी जल्दी पानी देना चाहिए, पिताजी की आज्ञा है ना। शकुंतला ने तपाक से कह दिया ना ना ना, आज्ञा के कारण थोड़े पानी देना है। उसके वाक्य देखो, वो तो कहती है न केवलम तातनियोग एव अस्तिमे सोदर स्नेहो पेतेषु। पिताजी की आज्ञा से हम पानी नहीं दे रही है, ये तो मेरे भैया है, ये मेरे भैया है। पौधों को भैया मानना ये भारत के ऋषि सिखाते हैं। अरे संसार के किस देश में आपको मिलेगा कि एक छोटे से पौधे का विवाह करना और वो प्रतिवर्ष भी करना। लेकिन हो जाने दो दिवाली, आप सबके घर में विवाह मंडेगा, तुलसी जी का विवाह। और तुलसी कौन है? हमारी बिटिया है, त्रिमासावर्धिता कन्या, सावन में लगाना, कार्तिक में उसका विवाह करना। हमारे ऋषियों ने हम लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, प्रकृति में साक्षात चैतन्य को देखना सिखाया। इस देश की हर भाषा में चंद्र को चंद्र नहीं कहते, चंदा मामा। ये कहां से मामा हो गया? समझने की बातें ये हैं। हमारी परंपरा में एक नियम है कि भैया दूज के दिन किसी को भी अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। भैया दूज के दिन भगिनी गृह भोजन पंचांग में लिखा हुआ मिलता है, उस दिन जो अपने घर का अन्न खाता है उसको दोष लगता है, बहन के घर का खाओ। हमारे एक न्यासी बंधु है समन्वय परिवार के, वो उनकी तीन बहनें एक दिन में जाकर के तीनों के घर पर, जबलपुर से फ्लाइट लेना, दिल्ली जाना, देहरादून जाना, तीनों बहनों से राखी बंधा करके फिर आना। बहनों के घर पर जाना ही चाहिए, बहनों के घर पर जाकर के खाना ही चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी सब भाषाओं में होगी। ये तोता मैना की कथा तो सर्वत्र है, उसमें कौन बड़ी बात है? ये सिखाना नहीं पड़ता। हम लोग मनाते होंगे, पशु भी मनाते होंगे उनकी पद्धति से, पता नहीं। लेकिन भाई बहन का त्योहार, एक धागा, बट इंपॉर्टेंस इट हैज गॉट। भगिनी गृह भोजनम, अच्छा जिसके बहन नहीं होगी या बहुत दूर बहन होगी तो नहीं जा पाएगा, अच्छा दो बहनें होगी समझ लो तो कहां कहां जाएगा, कौन सी शहर में जाएगा? तो शास्त्रकारों ने कहा अपने मित्र की बहन को अपनी बहन मानना और उसके घर पर भोजन करना, अपने घर पर नहीं करना। और बहनों के लिए उस दिन का नियम बताया कि जब तक भाई को राखी नहीं, भाई की आरती नहीं उतारेगी भैया दूज के दिन, भैया दूज के दिन अपने भाई कि आरती उतारे बिना जो बहन भोजन करती है उसको दोष लगता है। यह अभिसरण देखो, ये सब बातें मुझे मेरे बचपन में थोड़ी फालतू भी लगती थी, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था। अब लगता है कि हमारे ऋषियों ने कितना कमाल कर दिया। ये फैमिली इंटरेक्शन है और आज वही कम हो गया। किसी का किसी के साथ मानो संबंध ही रहा नहीं। तो चलो, बहन को भाई के लिए प्रतीक्षा करनी है। अब शास्त्रकारों ने इसका भी विचार किया कि समझ लो भाई बहुत दूर है, आ ही नहीं सकता है, तो क्या करना। शास्त्रकारों ने उत्तर दिया, सायंकाल तक उपवास करना और चंद्रमा जब उग जाते हैं चंद्रमा को भाई मान करके उसकी आरती उतारना और फिर भोजन करना। तो चंद्रमा अपनी मां का हो गया भाई, तो हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल मामा, चंदा मामा। प्रकृति के साथ ये संबंध देखो, प्रकृति के साथ भी जब हम संबंध जोड़ते रहेंगे ना, तो कम से कम हमारे ह्यूमन रिलेशंस ठीक ठाक तो भी रहेंगे। आज वही सब बर्बाद हो गए, नष्ट होते जा रहे। महर्षि कर्म ने कहा, नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहे नया पल्लवम आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्यावत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायता। वो अपनी शकुंतला बिटिया आज जा रही है, वो सब लोग मिलकर के उसको अनुमति दो, विदा करो। इसके पश्चात का एक श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बतलाऊंगा नहीं, बाद में प्रसंग में कहीं बतला दूंगा, लेकिन बोल करके रखता हूं कि किस प्रकार का उपदेश कर्म ने किया है शकुंतला को विदा होते समय। हम अपनी कन्याओं को उपदेश करते हैं क्या, एक प्रश्न ही है। शुश्रूषा स्वगुरु कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतीपंगमा भूयिष्ठा भव दक्षिणा पर्यने भाग्येश्वरुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। थोड़े में अर्थ बतला ही देता हूं, क्या करो, आगे जाना कठिन रुकना भी कठिन, सब कुछ अच्छा है ये घड़ी अच्छी नहीं है। शुश्रूषस्व गुरुन, बिटिया जाकर के घर के सब बड़ों की सेवा करना, यहीं से डिफरेंस देखो। क्योंकि तुम एक परिवार की बहू बनकर के जा रही हो, खाली एक मिस्टर की मिसेज बनकर के नहीं जा रही हो मैडम। बहू का आगमन घर में होना है, बड़ों की सेवा करना। फिर कहते हैं अपनी जो सपत्नियां हैं, सौतें हैं, आज की भाषा में बोलना हो तो तुम्हारी जो देवरानी है, जिठानी है या ननंद है, जो तुम्हारी समवयस्का है लगभग, उन सबके साथ तुम्हारा मैत्री संबंध होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस। वहां पर मान अपमान नहीं। शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, फिर कहते हैं भर्तुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतीपंगमः। बेटी एक बात का ध्यान रखना हो, कभी पति ने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं कह दिया तो तुरंत अपना मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं, चिढ़ने की आवश्यकता नहीं। आज की भाषा में बोलना हो तो मूड खराब करने की आवश्यकता नहीं। छोटी छोटी बात पर, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा बोलते बोलते कि उस समस्या को अभी बोलूं कि नहीं बोलूं। हमारे देश के पतन की जो अनेक विधाएं हो गई उसमें एक बहुत बड़ी गंभीर बात आजकल यह है, हमारे यहां पर संबंध विच्छेद का प्रमाण कितना बढ़ गया, डायवोर्स। देखते देखते और जब उन केसेस का विचार करते हैं ना तो ध्यान में आता है कि कोई बड़े इश्यूज है नहीं, छोटी छोटी बात से मतभेद, एक कन्या को दूसरे परिवार में ले जाकर के जब हम उसको वहां पर उसके साथ एक जीव करना चाहते हैं तो जिन परहेजों का पालन हम लोगों को किया करना चाहिए उन परहेजों का हम लोगों को पता ही नहीं, लगभग विस्तार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कृष्ण जन्म तक मुझे पहुंचना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विवाह करने में जितना विलंब आप करेंगे उतना उतना पछतावा ही है। विवाह के पश्चात संतति जन्म लेने में जितना विलंब होगा उतना उतना पछतावा ही पछतावा है। एक तो बात यह भी है कि हमने अपनी कन्याओं का और पुत्रों का भी पालन करते समय एक ध्यान रखा नहीं, एक ही बेटा हुआ एक ही बेटी हुई उनको इस प्रकार पाला जाता है इस प्रकार पाला जाता है, वो पालने में मुझे आपत्ति नहीं है बट दैट मार्स देयर साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसको नहीं सुनने की कैपेसिटी रही नहीं। और जब बचपन से इतना लाड़ इतना लाड़ इतना लाड़, जो कहा तैयार वो कहा तैयार वो कहा तैयार, आपकी कितनी भी संपत्ति है और आप कितने भी समर्थ है, ध्यान एक बात का रखना चाहिए, उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए आप 5 बार यस कहो लेकिन 1 बार नो कहना भी जानो। तो उसको नहीं सुनने की आदत होगी, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। अच्छा, पहले 4-5-6 बच्चे घर में होते थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके कैसे चलना इसका ट्रेनिंग पहले से ही मिल जाता था। हमारी परिवार संस्था को हम लोगों ने नष्ट किया है। और ध्यान रखना, अध्यात्म नहीं होगा तो जीवन में आप उतने दुखी नहीं होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी जन्म में तो कोई बात नहीं, नो हेस्ट, अगले जन्म में देखेंगे। लेकिन परिवार संस्था ठीक नहीं रहेगी तो यही जन्म आपका बेकार हो गया, बुढ़ापा ही बिगड़ गया। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये हमने किया। कभी हमने अपनी बिटिया को समझा करके नहीं कहा है क्या, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मेरे सामने का एक प्रसंग बतलाता हूं, एक बहुत बड़े परिवार में उनकी बेटी ने एक नया मोबाइल नए मॉडल का कुछ मांगा, पिताजी का देखेंगे नेक्स्ट वीक। अब उनके लिए तो वो बात तुच्छ बात है, खाली यस कहने की बात है। मां ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नेक्स्ट वीक देखेंगे। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा, बच्ची को ये सुनने की आदत होनी चाहिए, अभी तो मैं उसको चाय से दे सकता हूं, कल उसके पति ने यदि उसको ये कहा कि ये बात अपन 15 दिन के बाद सोचेंगे, ये तो बिगड़ जाएगी। हम लोग जो सिनेमा देखते हैं, हम लोग जो ड्रामा देखते हैं, उनको देख करके इतनी फॉगी आइडियाज हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि हमको लगता है जीवन भी एक नाटक ही है, जीवन ड्रामा नहीं है। यहां पर अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है, यहां पर सुख है तो परिश्रम भी है, और यह सब करने का अभ्यास, यह सब करने का ट्रेनिंग यदि नहीं होगा ना, आपकी बेटी जाकर के न स्वयं सुखी रहेगी न औरों को सुखी रहने देगी। ये सारी बात मैं बंबई छोड़कर के बोल रहा हूं, बंबई के लोग तो समझदार लोग हैं। भरतुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतिपंगम भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वनुत्सेकिनी। कर्म महर्षि ने कहा बिटिया दो बातें और ध्यान में रखना, अपने अंतकरण की उदारता में कमी मत लाना, अपने आसपास के लोगों को देते रहना, बढ़िया से बढ़िया वस्तु यदि एक भाभी नणंद को दे देती है ना, हाँ वो तो जीत लेती है उसको। संत रामदास स्वामी ने, जिनका मैंने कल नामोल्लेख किया था, उन्होंने कहा संसार में आपको वास्तव में आगे आना है, अपने साथियों को संभालते समय एक बात का ध्यान रखना, दो ही बातें कही, उत्तम पदार्थ तो दूसरे से जावा, शब्द योजू नहीं बोलावा। हमारे पास आई हुई एक बढ़िया वस्तु हम अपने परिवार के अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं क्या? यदि बहू ने आकर के अपनी सास से कहा कि ये बढ़िया ज्वेलरी मुझे मां ने दी है, मुझे भी क्या करनी है, नंद भाई को दे देगी तो कैसे रहेगा? ओ वो तो सास को जीत लेगी, ये वशीकरण है। लेकिन ये बहू देगी कैसे, उसकी मां ने उसको ट्रेनिंग देकर के भेजा है, किसी को दिखाना भी मान। क्यों परिवार टूटते जा रहे पता है? इसका मुख्य कारण इस मां का उस बेटी के घर में मोबाइल के द्वारा जो इंटरफियरेंस है ना, ये परिवारों के टूटने का मुख्य कारण है। हमारी बेटी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका उस अबोध मां को, अज्ञानी मां को पता नहीं। बेटी का विवाह हो गया, यदि वो अपने उस घर के साथ पूरी तरह समरस हो जाए ऐसे लगता हो, तो पहले आप अपने से उसको डिस्कनेक्ट करो। तू जमी के नहीं, आज शू खादू, तेरी तबियत केम छी। उसके घर के लोगों के साथ उसको हम सम्मिश्रित होने देते ही नहीं। सबसे बड़ी अपराधी लड़की की मां होती है, बुरा मत मानना, मैं सबके भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए बोल रहा हूं। अच्छा दूसरी बात ऐसी है, ये बात आपको भी मान्य है, जब आपकी बहू के पास उसकी मां के फोन आते हैं ना, तो आपका जी जलता है। कितनी बात कर दी हो, कितनी बार बात करीश है ना। यदि ऐसा हमें अपनी बहू को देख करके होता है, तो फिर हमारा काम होता है कि हम अपनी बेटी के साथ इतनी बात नहीं करें, बेटी को समझावे, बिटिया कोई आपत्ति है कभी भी तुम बोल सकती हो, कोई इसमें आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन रोज रोज इतनी बात नहीं करनी चाहिए। यहां से उसको डिस्कनेक्ट किए बिना वो वहां ठीक से कनेक्ट होगी नहीं, और कनेक्ट होगी नहीं तो डायवोर्स की तैयारी, ये ध्यान रखना। ये जीवन भर रोने की तैयारी है, और ये कौन कर, ये हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम पागल नहीं है, हम पापी नहीं है, हम बुरे भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी का ठीक से ज्ञान नहीं है, और वही ज्ञान महाभास्कर आपको पग पग में देना चाहते हैं। हर बात की एक सीमा होनी चाहिए। महर्षि कण्व ने विदा किया शकुंतला को, साथ में उसके ऋषि कुमारों को दिया। शकुंतला आकर के पहुंचती है महाराज दुष्यंत के पास में। वास्तव में महाराज दुष्यंत को उससे राजमहल में मिलना चाहिए था। दुष्यंत ने सीधे कहा, जिसको मिलना है सभा में, नॉट हियर, ऑफिस। ओके फाइन। शकुंतला वहां भी, ब्रह्मचारी लोग साथ में थे। अब वो जो शकुंतला को महाराज दुष्यंत ने अंगूठी दी थी और फिर वो अंगूठी खो गई, शाप दिया था दुर्वासा महर्षि ने, और शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। ये सब जो बात है ना, ये कालिदास की कल्पना की बात है, ये महाभारत में नहीं। महाभारत इज रियलिस्टिक। लेकिन चूंकि कालिदास अपने हर हीरो को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, साहित्यिक है, इसे साहित्यिकों की बातें पढ़कर के कथाएं नहीं होनी चाहिए, मूल ग्रंथ को देख करके होनी चाहिए। इसीलिए तो हम द्रौपदी पर अन्याय करते हैं और पापी कर्ण को इतना महान समझते हैं। ये सब झूठ बोलने वाले साहित्यिकों की करतूत है। वी मस्ट गो बाय द ओरिजिनल्स एंड देयर वी आर। मूल बात ऐसी है कि दुष्यंत के सामने जब शकुंतला ने जाकर के अपनी सारी बात कह दी, मैं आपकी पत्नी, आपके पुत्र को साथ में लेकर के यहां पर आए, दुष्यंत चिढ़ गया, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। सामुहूर्तमिवध्यास्वा दुखामर्ष समन्विता। शकुंतला का वर्णन महर्षि व्यास करते हैं, दुख, उसको तो धक्का लगा, अमर्ष, उसको सह नहीं पाई। भर्तारमपि संप्रेक्ष क्रुद्धा वचनम अब्रवीत। चिढ़ गई। ध्यान रखना, शकुंतला भी तेजस्विनी क्षत्राणी है, मालिनी है, वह ऐसी सब बातें सह लेने वाली नहीं है। उससे कहा, महाराज याद दिला दूं आपको, आप महर्षि कण्व के आश्रम में आए थे, मेरे पिताजी उस समय वहां पर नहीं थे, मैंने अपना परिचय आपको दिया था, विश्वामित्र महर्षि और मेनका की मैं कन्या शकुंतला। मेनका की कन्या हो ना, तो मां जैसी हो। दुष्यंत ने ये सुनाया उसको, ये कौन औरत आ गई भाई, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं, ये इंडियन हस्बैंड। एनीवे, दिस इज मेल मेंटालिटी, नॉट जस्ट इंडियन हस्बैंड। साफ झूठ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। दुष्यंत ने सीधे कह दिया, ये शाप वाप नहीं है, उसने कह दिया। महाराज आपको सब याद है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी पत्नी को नकारने का महान पाप कर रहे हैं। आपको पता नहीं है पत्नी मनुष्य के जीवन में क्या होती है। और यहां पर जो शकुंतला ने बोला है ना, ये भारतीय दृष्टिकोण है पत्नी के लिए। वो बोलती है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तनिष्यतः। मनुष्य के जीवन की अर्धांगिनी उसकी भार्या है। मनुष्य का जीवन में सबसे प्रिय मित्र यदि कोई है तो उसकी भार्या है। भार्या श्रेष्ठतमा सखा। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के बारे में मनुष्य स्वयं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता यदि भार्या का पत्नी का सहयोग उसको प्राप्त नहीं होता है। इतना ही नहीं महाराज, संसार सागर से तरने के लिए भार्या नाम की नौका हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भार्या मित्रम तरिष्यतः, तरने के लिए महाभारत काल का कहीं पर भी यह दृष्टिकोण नहीं है कि पत्नी के कारण मनुष्य डूबता है। वो तो यही कहते हैं स्थान स्थान पर कि पत्नी के कारण ही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। संपूर्ण ग्रंथ में कहीं पर भी आपको महिलाओं का वर्ग कम महत्व का ऐसा मिलेगा ही नहीं। सखाय प्रविविक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदाः, क्या वर्णन है। जब अकेले बैठते हैं ना तो अत्यंत मधुर वाणी से योग्य परामर्श देकर के एक पत्नी अपने पति का जितना कल्याण कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता महाराज। पति की मनोभूमिका को बदलने की क्षमता पत्नी की प्रियता में है, उसकी जागरूकता में है। फिर कहते हैं पितरो धर्म कार्येषु, जब कोई धर्म कार्य करना होता है ना तब ये पिता का स्थान पत्नी का है। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं। इन सबको पूछो, यदि इनसे पूछा गया ना वो पूजा कर रही है, सब घर में पूछते हैं इन्हें कहो अहिया शू करवू हो, क्या शू करवू हो। पति पूछता है पत्नी से क्योंकि उसको कभी अनुभव ही नहीं है। इनको पूछो ना सब तीर्थों का पता है क्या, इनको पूछो सबका पता है, सब तीर्थों का पता है, सब मंदिरों का पता है, कहां क्या है इसका पता है, किस पोथी में क्या है इसका पता है, वंडरफुल। और इसलिए अच्छा इनको अभ्यास भी होता है देने का, पूजाएं देखी हुई होती है। पतिदेव बेचारे कभी कभी पूजा करते हैं, इसलिए जब कोई विशेष पूजा करनी होती है तो उनको पत्नी को कंसल्ट किए बिना कोई गति नहीं है। पितरो धर्म कार्येषु, धर्म कार्य करने में पिता के समान वो मार्गदर्शन करती है, ये आज की बात नहीं तब से चली आई है। और फिर कहते हैं कितना सुंदर वाक्य है, भवन्त्यार्थस्य मातरः, जब पति बीमार होता है तो पत्नी मां बनकर के उसकी सेवा करती। एक पत्नी की कितनी भूमिकाएं। शकुंतला ने भरी सभा में कहा महाराज आप जीवन की सारी महानता को नकार रहे हैं। सुसंरब्धो पिरामाणाम न कुरियाद प्रियम न रहा, आपत्ति में होने पर भी कभी भी मनुष्य को अपनी पत्नी का अप्रिय नहीं करना चाहिए, पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। आधा मत सुनना हो पत्नी को क्या करना है बाद में कर बताऊंगा, नहीं तो घर पर जाकर के यही सुनाएंगे सुना कि नहीं आज क्या बोला था। प्रतिम प्रीतिंच धर्मंच तस्यायत्तमवेक्ष ही, मनुष्य के जीवन की प्रियता उसका जीवन सौख्य उसका समाज में प्रतिष्ठित होना और उसका धर्म कार्य करके तर जाना ये सब पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए महाराज आप अपने भाग्य का विचार कीजिए। आप मुझे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अपने इस पुत्र को संभाल लीजिए। दुष्यंत ने कहा अरे तुम कौन हो मुझे पता ही नहीं है, क्या बकवास लगाई है तुमने, मैं तुम्हें ही नहीं पहचानता हूं तो यह बच्चा मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। हल हो गई कि नहीं, क्या किया शकुंतला ने? ठीक जा रही हूं, पश्चाताप आपको होगा क्योंकि सत्य मैंने कहा है, आपका नहीं, लेकिन मुझे संसार का नियंत्रण करने वाले उस परमात्मा का विश्वास है महाराज, चली मैं। ऐसा कहकर के जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, आकाशवाणी हुई, महाराज दुष्यंत सावधान, गलती कर रहे हैं आप, शकुंतला आपकी पत्नी है और ये आपका पुत्र है जो आपका उत्तराधिकारी होने वाला है, स्वीकार करो। यह आकाशवाणी सबने सुनी। शकुंतला ने मुड़कर के पीछे भी नहीं देखा, वो माननीय है, समय समय पर पत्नी को भी माननीय होना चाहिए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं वैशंपायन महाराज दुष्यंत, सिंहासन से उतर करके नीचे आए, शकुंतला के पास खड़े हुए, सीधे शकुंतला से कहा, मुझे क्षमा करो, तुम्हें बहुत कष्ट दिया मैंने, लेकिन बिना ऐसा कुछ हुए यदि मैं तुम्हारा स्वीकार करता तो मेरे अमात्यों को मेरे प्रति आशंका हो जाती, तुम मेरी हो, आओ आदर के साथ चलो। तुरंत शकुंतला ने दुष्यंत को प्रणाम किया, दोनों का मिलन हुआ। जिस समय यह आकाशवाणी हुई उसके शब्द थे, भरस्व पुत्रं दुष्यंत मावमौस्था शकुंतलाम, यह तुम्हारा पुत्र है दुष्यंत, इसका भरण पोषण करो। भरण पोषण करने के लिए शब्द आता है भरस्व पुत्रं दुष्यंत, भरस्व इसी से उनका नाम हो गया भरत। पंचास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला, आज सर्वदमन का नाम हो गया भरत, और इन्हीं भरत जी के नाम से इस देश का नाम आगे चलकर के भारतवर्ष हुआ। इतना पराक्रमी इनका जीवन था। महाराज दुष्यंत के पश्चात वे राजा बने, उनकी पत्नी का नाम सुनंदा रहा, उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम सुहोत्र रहा। महाराज भरत जी के पराक्रम के कारण दिग्दिगंत सब कुछ सारा संसार भारतवर्ष के अधीन हो गया। जो पराक्रम भरत जी ने अपने जीवन में करके दिखाया उसकी कीर्ति गाथा पीढ़ियों तक चलती रही, यह वंश भरत वंश कहलाया। आगे चलकर के इसी वंश में उत्तमोत्तम राजाओं के होते हुए महाराज शांतनु का जन्म हुआ। महाराज शांतनु का एक विलक्षण प्रसंग में गंगा जी से विवाह हुआ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे,
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे,
त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
जय जय गंगे नमो नमो,
जय जय गंगे नमो नमो,
हर हर गंगे
नमो नमो,
हर हर गंगे नमो नमो,
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।
गंगा जी के साथ एक राजा का विवाह होने की बात सुनते समय थोड़ा सा समझ भी लेना चाहिए। भगवती गंगा जी को हम एक नदी के रूप में जानते हैं, लेकिन इन सारे तत्वों के तीन तीन रूप हुआ करते हैं। ग्रंथों को, संस्कृति को समझने की भी एक मेथोडोलॉजी है, उसके पद्धति से उसको समझना चाहिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीनों रूप हर पदार्थ के हमारे शास्त्रकारों ने बतलाए हैं। हम लोग प्रातःकाल में सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं, ये सब करते हैं। ये किसको करते हैं? ये हीलियम के उस गोले को करते हैं क्या? नॉट दैट। भारतीय ऋषियों का यह सिद्धांत है, जो कि अब विज्ञान के द्वारा धीरे धीरे पूरी तरह प्रमाणित ही होता जा रहा है, कि सर्वत्र चैतन्य का विलास है, इन सब पदार्थों में भी चैतन्य है। तदीष्टात्री देवता, उसकी यह पूजा होती है। ये बताइए, पूरे भारत को प्रणाम आप कैसे करेंगे? एक तिरंगे झंडे को प्रणाम करने से पूरे भारत को प्रणाम होता है कि नहीं? ये देश का ध्वज है, होता है ना। जिस प्रकार, अच्छा वो तिरंगा झंडा एक कपड़ा ही है कि नहीं? लेकिन हम उनको कपड़ा नहीं मानते, उसके बारे में कितना आदर रखते हैं। पूरे देश के प्रति हमारा जो सारा आदर है, उसकी ओर देख करके हम अभिव्यक्त करते हैं, उसका सम्मान देश का सम्मान मानते हैं, उसका अपमान देश का अपमान मानते हैं। ये उसका प्रतीक है। उसी प्रकार सूर्य भगवान उस तेजोमय नारायण के प्रतीक है, इसलिए सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, अस्तार्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य की पूजा जिस प्रकार करते हैं, उस समय उस नारायण का ध्यान करते हैं। ध्येयम् सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायण सिजासन सन्निविष्टा, तेयूरवान् मकरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी, हारी हिरण्मय वपुर धृतशंख चक्र। यह सूर्य भगवान का आदि दैविक स्वरूप, वैसे गंगा जी का, मकरवाहिनी भगवती देवी है वो, उनका मूल निवास स्वर्ग में। अब मृत्युलोक में उनका आगमन तो हुआ, वह सगर वंशीय राजाओं की तपस्या के कारण हुआ, जो भगीरथ जी की पीढ़ी में सफल हुआ। लेकिन ये मूल देवता भगवती गंगा जी एक बार देवराज इंद्र के साथ देवताओं की सभा में बैठे हुए एक राजा को देख करके, घटना ऐसी घटी, ब्रह्मा जी भी वहां पर थे और गंगा जी जब वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए आई तो एकाएक हवा जोर से चली। हवा के चलने के कारण गंगा जी के शरीर का वस्त्र थोड़ा इधर उधर हो गया, तो वहां पर बैठा हुआ मृत्युलोक से गया हुआ राजा महाविष, वह आसक्त नेत्रों से गंगा जी की ओर देखता है। गंगा जी ने भी उसी प्रकार राजा की ओर देखा, यह ब्रह्मा जी ने देखा। ही कुड हैव इग्नोर नो, लेकिन वो ऐसे इंडियन नहीं थे। धर्मशास्त्र का विधान ऐसा है कि जिसको जिस गलती के लिए दंड देने के लिए अधिकार दिया गया है, उसने यदि उस व्यक्ति को अपराध होने पर भी दंड नहीं दिया तो दंड न देने वाले को दंड करना होता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी इतने फ्रीली नहीं व्यवहार कर सकते। ब्रह्मा जी ने डांटा गंगा जी को भी, यहां पर स्वर्ग में मेरे सामने पृथ्वीलोक में जा, तुम्हारा मानवीय जन्म होगा। गंगा जी को मान्य करना पड़ा। अब ये महाविष भी पृथ्वीलोक में पुनर्जन्म लेकर के आते हैं, वे शांतनु बनते हैं। गंगा जी का शांतनु के साथ विवाह होना यह तय था, लेकिन इसके पूर्व घटना ऐसी घटी, गंगा जी को इस प्रकार का शाप मिला है ये आठ वसुओं को जब पता चला तो जल्दी जल्दी आकर के वो गंगा जी से मिले। कहा हम पर भी एक आफत आई है, आप कृपा करके हमारी एक बात सुन लेना। उन पर क्या आफत आई थी? उन पर आफत यह आई थी कि एक बार ये आठ वसु, वसु ये देवताओं की एक कैटेगरी है, वर्ग है, ये संख्या में आठ है, जैसे रुद्र ग्यारह है, आदित्य बारह है, वसु आठ है। ये सब गए थे वन विहार के लिए, पिकनिक के लिए गए थे पत्नियों को साथ लेकर के, लॉन्ग वीकेंड होगा। अब उसमें क्या हो गया, घूमते घामते पास में वशिष्ठ महर्षि का आश्रम था और वहां की कुछ गौवे चरने के लिए इधर उधर घूम रही थी, उसमें किसी ने इन वसुओं की पत्नियों को, वसु तो अपना अपना वो अपना खेल खेल रहे थे, ये महिलाएं अपना घूम रही थी, तो किसी ने वहां पर जानकारी दी कि इसमें से जो ये गाय है ना नंदिनी, इसका दूध यदि पिया जाए तो 10,000 वर्ष पर्यंत मनुष्य युवक रहता है। अब बाकी तो सब ठीक है, बाकी भी पत्नियों ने सुन लिया, सब लोग समान नहीं होते हैं ना। एक वसु की पत्नी द्यू नाम के वसु की जो पत्नी थी वो बड़ी हठीली थी, एकदम उसने आकर के कहा मुझे तो वही गाय चाहिए, उसको लेकर के आइए, इतने बड़े हैं आप इतना भी काम नहीं कर सकते क्या, इतना बड़ा पद है आपका, इतना बड़ा मंत्री पद है, इतना पैसा नहीं खा सकते क्या, ऐसा जैसे पत्नी बोलती है, इतना तो एडजस्टमेंट कोई भी कर लेता है। ये सारी सलाह अनेक बार घर में से होती है, इतने इतने लोगों ने इतना इतना किया, आप कुछ भी नहीं किए। अब ऐसा रोज रोज जब दिमाग चाटती है तो आखिर पति भी क्या करे बेचारा। बाहर के लोगों को फेस करना इतना कठिन नहीं लगता है। चलो अपनी कथा के आगे चले। अब क्या हुआ, अब उस दीव ने सारे वसुओं से कहा भाइयों मेरे पीछे आफत कहां से आ गई रे, ये मेरे पीछे पड़ी है, अब चलो प्लीज हेल्प मी। तो बाकी वसुओं ने कहा भी, अरे वशिष्ठ महर्षि की गाय चुराना अच्छी बात नहीं है भैया। तो उसने अपना विचार स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया। वो आया, पत्नी ने कहा आ गए ऐसे ही है आप, क्या करता बेचारा। आखिर इन सारे वसुओं ने कहा ठीक है तू अपना काम करो, हम थोड़ा संभालते हैं। अरे खाने पीने में भी बहुत लोगों का एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है तब काम बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी विधानसभा में जाकर के बैठ जाइए मुंबई की, ये सब उनका रोज का काम है। आखिर द्यू नाम के उस वसु ने अपने सात मित्रों के सहयोग से उस गैया को चुराया। महर्षि वशिष्ठ को पता चला, महर्षि वशिष्ठ ने इन सबको लताड़ा, कहा अरे देवताओं की कोटि में हैं आप और ये काम करते हैं, यहां पर रहने के पात्र नहीं, जाओ मृत्युलोक में छोड़ो, मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म होगा। तो फिर सातों वसुओं ने क्या किया, महर्षि वशिष्ठ के पग पकड़ लिए, कहा हमारी गलती नहीं थी, ये इसकी पत्नी ने कहा, इसने ये काम किया, ये मुख्य था, इसी को चोरी करनी थी, हमको नहीं करना था, हम केवल साथ में आए। ओके महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है आप में से सात वापस लौट सकते हैं, एक एक दिन का जन्म लेकर के, लेकिन द्यू को तो वहीं पर रहना पड़ेगा। चलो ये आठों मिलकर के गंगा जी के पास आकर के कहते हैं कि माताजी आपको जाना ही है भारत में, हम आपके पुत्र बनकर के आते हैं। और किसी लौकिक मानुषी मां के पुत्र बनने से अच्छा है हम आपके पुत्र बनकर के आ जाएं। अब आपको भी शाप है, हमें भी शाप है, लेट अस एडजस्ट। एक काम करना, हमारा जन्म होते ही आप हमें उसी दिन गंगा जी में प्रवाहित कर देना। शांतनु का जब गंगा जी के साथ विवाह हुआ तब गंगा जी ने स्वयं यह शर्त लगाई थी कि मैं कौन हूं आप पूछेंगे नहीं, और मैं जो करूंगी उसे आप नहीं कहेंगे नहीं। गंगा जी के व्यक्तित्व से प्रभावित शांतनु ने इस बात को माना और होने वाले हर पुत्र को भगवती गंगा जी के ही प्रवाह में, देवी गंगा गंगा के जल के प्रवाह में उसको विसर्जित करती रही। ये सब हस्तिनापुर के निवासी है, हस्तिनापुर में गंगा जी है। महाराज शांतनु का मन जल रहा था, एक एक पुत्र अपने सामने इस प्रकार जल में प्रवाहित कर दिया जाए, अरे पिता इस बात को कैसे सह सकते हैं। लेकिन शांतनु को डर भी यह था कि मैं इससे पूछ कैसे सकता हूं, मैं पूछूं और ये चली जाए तो। आठवें बालक के समय वे अपने को रोक नहीं पाए और जैसे ही उन्होंने उसको टोक करके कहा, अरे तुम कौन हो, एक 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 करके मेरे सात बालकों को तुमने प्रवाह में प्रवाहित कर दिया, एक डाकिन भी ऐसा काम नहीं करती है, तुम्हारा मन कितना कठोर है, कौन हो तुम। शांत भाव से खड़ी गंगा जी ने कहा, महाराज आपके साथ विवाह करते समय दो शर्तें मैंने रखी थी, मैं कौन हूं आप पूछेंगे नहीं, और मैं जो कुछ करूंगी मुझे आप टोकेंगे नहीं। आपने मेरी दोनों बातों का आज भंग कर दिया, जा रही हूं। आपका बेटा आपको चाहिए ना, समय पर मिल जाएगा महाराज, तब तक ये मेरे पास रहेगा। और गंगा जी के जल में गंगा जी अंतर्धान हो गई। ये कौन थी, महाराज शांतनु उदास हो गए, बेटा भी गया, बेटे की मां भी गई। उदासी की सीमा नहीं रही, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। गंगा जी का इतना प्रभाव उनके ऊपर था, वे भूल नहीं सकते थे, विवाह का विचार भी नहीं कर सके, रात दिन चिंतन में रहे। कुछ वर्षों के पश्चात, लगभग 13-14 वर्षों के बाद, अन्य मनस्क होकर के महाराज शांतनु गंगा जी के तट पर जब घूम रहे थे, देखा कि गंगा जी की धारा एकदम पतली हो गई। ये क्या हुआ, ये सोच करके जैसे वो जाते हैं इसका कारण ढूंढने के लिए ऊपर ऊपर की ओर, तो आगे देखा एक 14-15 वर्ष का बालक, अत्यंत तेजस्वी और तर्कस में से बाण निकाल निकाल करके अत्यंत वेग से एक जाल बना रहा है पर्दे जैसा, जिससे गंगा जी के जल को रोक दिया। बाण का भी इस प्रकार का कोई जाल बन सकता है, बाणों की दीवार से गंगा जी के जल को रोका जा सकता है। शांतनु विश्वास ही नहीं कर सकते थे, लेकिन जो अविश्वसनीय लगता था वो आंखों के सामने दिख रहा था। गंगा जी का जल रोक दिया गया, थोड़ा सा जल बह रहा है, चकित होकर के शांतनु देख रहे हैं। तर्कस में से बाण निकालना, धनुष के ऊपर लगाना, वेग से उसको छोड़ना, उसका शौर्य, उसका दिव्य भव्य रूप, उसका कौशल्य, सब शांतनु के लिए आश्चर्य का विषय था। शांतनु के मन में विचार आया, यदि वो बालक मेरा आज मेरे पास होता तो वो भी लगभग इसी आयु का होता। आंखों में आंसू आ गए। उत्तराखंड की आपदा में जिन लोगों ने अपने समीप के लोगों को खोया, अरे अपने बच्चे जैसे किसी बच्चे को आते देख करके मां आशा से आगे बढ़ती, अपना बच्चा नहीं है वो, ये देख करके वो कितना रोती थी। हम इसके प्रत्यक्ष दर्शी। अपनों की याद आती आनी चाहिए, यही जीवन है। इतने में उस बालक का ध्यान गया कि कोई मुझे देख रहा है, और एकदम वो बालक शांतनु की ओर देख करके जल में अंतर्धान हो गया। शांतनु विचार करते रहे कि ये क्या देख रहा हूं मैं। इतने में क्या हुआ, एक दिव्य स्त्री जल में से बाहर आई, उसके साथ वो बालक था। वो जल के ऊपर से चलती चलती आई। महाराज शांतनु शब्द होकर के देख रहे हैं। समीप आकर के उस स्त्री ने पूछा, पहचाना? शांतनु देखते रह गए। महाराज, आपके साथ विवाह करते समय मैंने दो शर्तें रखी थी, जिनके तोड़ने के कारण मैं आपसे विदा होकर के चली गई। मैंने आपको एक वचन दिया था, आपके पुत्र को मैं आपके पास लौटाऊंगी। देवव्रत, अपने पिताजी को प्रणाम करो। उस बालक ने आगे बढ़ करके शांतनु को प्रणाम किया। गंगा जी ने कहा, महाराज इसको मैं जानबूझ करके अपने साथ ले गई, क्योंकि इसकी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार मैं करवाना चाहती थी वैसी आप नहीं करवा सकते थे, वो आपके बस की बात नहीं थी। सारे संसार में आपको ऐसा बालक नहीं मिलेगा, इतनी शिक्षा देकर के मैं इसे आपको सौंप रही हूं। इसने वेद वेदांत का अध्ययन महर्षि वशिष्ठ मुनि से किया है, धर्मशास्त्र का अध्ययन बृहस्पति से किया है, और शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त की है भगवान परशुराम जी से। इतना प्रतापी और इतना ज्ञानी आपको अन्यत्र नहीं देखने मिलेगा। क्षमा कीजिएगा, ये सारी बात मैंने आपको पहले नहीं बतलाई, क्योंकि मैं समझ सकती थी कि आपका मोहाविष्टमन मुझे रोकता। आज आपका देवव्रत आपको सौंप रही हूं। देवव्रत बेटा, अब तुम्हें अपने पिताजी के साथ रहना है। महाराज, विदा हो रही हूं, शायद अब हमारा मिलना कभी नहीं होगा, कहकर के गंगा जी अंतर्धान शांतनु रोने लगे। देवव्रत ने कहा, पिताजी मैं रोज मां से पूछता था कि मेरे पिताजी कौन है, उसमें मां मेरे साथ में थी, पिताजी नहीं थे, अब पिताजी मिल गए, मां नहीं है। दिस इज लाइफ। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है।
कभी धनवान है कितना,
कभी धनवान है कितना,
कभी इंसान निर्धन है।
कभी सुख है कभी दुख है किसी का नाम जीवन है।
जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है किसी का नाम जीवन है।
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 किसी काम जीवन है।
देवव्रत को लेकर के महाराज शांतनु राजमहल पधारे। देवव्रत का परिचय महाराज शांतनु ने अपने मंत्रियों से सभासदों से कर दिया। देवव्रत सभा में जाकर के बैठने लगे। सभी के लिए देवव्रत आदर के विषय हो गए। उनका ज्ञान, उनका पराक्रम, उनका बल, उनकी सूझबूझ, उनकी धर्मनिष्ठा, इन सारी बातों को देख करके सब के सब मंत्री भी कहा करते थे, महाराज धन्य है ऐसे पुत्र को पाकर के आप। जब ये सिंहासन पर बैठेंगे तब बात ही कुछ और होगी। लेकिन देवव्रत के सिंहासन पर बैठने का संजोग आना ही नहीं था। एक अन्य घटना घट गई। एक बार महाराज शांतनु ऐसे मृगया के लिए यमराज जी के तट पर घूम रहे थे। अत्यंत विलक्षण सुगंधी कहां से आ रही है इसका पता चलाते हुए वे जाकर के पहुंचते हैं तो एक लावण्यवती कन्या, मछुआरे की लड़की सी लगने वाली, उस वेश के कारण नौका के पास खड़ी है। उसी के देह से वो दिव्य गंध आ रही है दूर दूर तक। महाराज शांतनु ने उससे पूछा परिचय। उसने अपना परिचय बतलाया, यहां के दासराज की मैं कन्या हूं, नाम मेरा सत्यवती है, पिताजी यहां के प्रमुख है बस्ती के, हमारे लिए आवश्यकता किसी बात की नहीं है, लेकिन धर्मार्थ काम कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर लोगों को बिना उनसे कुछ लिए केवल उस पार पहुंचाने का काम करती हूं, धर्मार्थ नौका लेकर। शांतनु ने कहा, तुम्हारे पिताजी से मुझे बात करनी है। एक राजा, चक्रवर्ती, सम्राट उन मछुआरों की बस्ती में जाकर के पहुंच गया, पास में ही थी। आश्चर्य से चकित होकर के सबने स्वागत किया। शांतनु ने सीधे कहा, इस कन्या को मैंने देखा, मेरी पत्नी एक थी, उसके चले जाने के पश्चात मेरा मन कहीं पर विवाह के लिए चला नहीं, मैं चाहता हूं कि आप एक कन्यादान मेरे लिए करें। दासराज ने कहा, महाराज धन्य हो गए हम, एक सम्राट चला करके जब मेरी कन्या की मांग करता है तो मेरा कितना गौरव हो गया। अच्छा आपको एक बात मैं और बता देता हूं, दासराज ने शांतनु से कहा कि मेरी कन्या नहीं है, यह राजकन्या है, यह है राजकन्या, लेकिन इसके देह से मछली की गंध बहुत आने के कारण इसके पिता ने इसका त्याग कर दिया था, हमने उसका अपहरण किया। मरण बीच में कोई एक प्रसंग ऐसा हो गया जिसके कारण अपने आप ही इसके देह की सारी गंध बदल गई और ये दिव्य गंधा गंधवती हो गई। वो प्रसंग क्या था ये न तो पिताजी को पता था और न राजा को पता है, सत्यवती को पता है, समय मिला तो देखेंगे। भगवान पराशर महामुनि का यह कृपा प्रभाव था जिससे उसकी गंध ही बदल गई। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो इसके लिए प्रस्तुत हूं, इसके होने वाला पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा। इस बात को सुनते ही महाराज शांतनु के सामने देवव्रत का भव्य दिव्य व्यक्तित्व खड़ा हो गया। देवव्रत को नकार करके और किसी को युवराज अथवा राजा बनाने की बात कोई सोच ही नहीं सकता है, उल्टे मंत्रीगण तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब देवव्रत का राज्य आरंभ हो जाए। शांतनु का मनमाना नहीं, शांतनु लौट करके आ गए। शांतनु तो लौट करके आ गए, वो तो घर पर पहुंच गए राजमहल में, लेकिन उनका मन वहीं रह गया, वो उस कन्या को बुला ही नहीं सकते, प्रयास किया नहीं बुला सके। काम तो खैर कर ही रहे थे सारे, लेकिन अन्य मनस्क उदास उदास से कर रहे थे। बुद्धिमान देवव्रत के ध्यान में ये बात आ गई कि पिताजी के कुछ गड़बड़ है। देवव्रत ने कहा, पिताजी पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका मन ठीक से लगता नहीं कहीं पर भी, कुछ हो गया है क्या? आपके स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। अब शांतनु कैसे कहे, एक पिता अपने पुत्र से कैसे कह सकता है कि मुझे और एक विवाह करना है, लेकिन कहा है वो और बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, और ये शब्द मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। शांतनु ने कहा, देवव्रत नहीं वैसे कोई बात नहीं, मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा ही है बेटा, लेकिन एक चिंता तो मुझे रहती है। बोले पिताजी, एव मुक्तस्य पुत्रेण शांतनु प्रत्यभाषत अर्पत्यतैक पुत्रत्वम् इत्याहुर्धर्मवादिनः। देखो बेटा, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को युद्ध पर कब जाना पड़ेगा इसका कोई नियम नहीं है, प्रजा की रक्षा के लिए हमें कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, युद्ध युद्ध होता है, इसलिए सारी तैयारियां होने के पश्चात भी कभी कभी संजोगवशात भी युद्ध में न राजा का केवल पराभव होता है, एकाध बार वो मारा भी जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने हम लोगों को कहा है एक ही बेटा होना बहुत बड़ी गलती है। अनपत्यतैक पुत्रत्वम, एक पुत्र होना पुत्र न होने के बराबर है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घट जाए तो घर में अंधकार हो जाएगा। इसलिए और कुछ नहीं बेटे, लेकिन तुम्हारे एकाध तो भी भाई होना चाहिए रे। हाउ ब्यूटिफुली ही सेड, ये भी मौज है। भी देवव्रत बुद्धिमान है। देवव्रत ने क्या किया बाद में देखेंगे, लेकिन इस पंक्ति ने मेरे मन को झकझोर दिया। मेरे मन की बात आपको बतलाता हूं, एक ही बेटा होना बेटा न होने के बराबर है। यह महाभारतकार का वाक्य, अच्छा उन्होंने यह कहा है इत्याहुर धर्मशास्त्र न अनपत्यदैक पुत्रत्वम इत्याहुर धर्मवादिनः, धर्म की दृष्टि से एक पुत्र होना पुत्र न होने के बराबर है। इस बात को समझाते हुए शांतनु ने कहा कि एक ही पुत्र होने से युद्ध में यदि वह वीरगति को प्राप्त हो जाए तो घर में क्या होगा। यह क्षत्रियों की बात है, प्राचीन काल में युद्ध क्षत्रियों को ही करना पड़ता था। आज सच्ची बात यह है, ठीक से सुनिएगा, कोई भी वाहन लेकर के सड़क के ऊपर आने वाला हर व्यक्ति लगभग युद्ध में ही है। रोड एक्सीडेंट्स में भारत का नंबर फर्स्ट है। अपनी तर्क की, मेरा भारत महान, डॉलर के आगे रुपये का क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में अनेक बार हम दोषी होते ही नहीं हैं। हमारी गलती नहीं थी, लेकिन सामने वाले की गलती के कारण पता नहीं कब किसका क्या होगा। है किसकी गारंटी? सवेरे निकला हुआ व्यक्ति सायंकाल में लौट करके आएगा ही कि आज गारंटी पूरे आसे तो हिमाचल भारत में रही नहीं है। मैं कितने परिवारों को जानता हूं, एक ही बेटा हुआ, दुर्घटना में चला गया, घर में अंधकार हो गया। एक ही बेटा क्यों हुआ जी? अरे विधाता ने तो हमें अनेक बालकों को जन्म देने की क्षमता प्रदान की, लेकिन हमारी मूर्ख फैशन के कारण हम लोगों ने बच्चों को जन्म लेने से रोक दिया। ये आपकी फैशन आपको लेकर के डूबने वाली है, ध्यान रखना। थोड़ी सही बात भी तो बोलनी चाहिए। अच्छा समझ लो, भगवान करे एक बेटा हुआ, दुर्घटना नहीं हुई, किसी के घर में हो नहीं, लेकिन एक बेटा जन्म लेकर के बहुत पढ़ा लिखा बढ़िया, और जो यूएस गया पढ़ने के लिए वही की मैडम को लेकर के वही बैठ गया। बुढ़ा बुढ़ी चौपाटी पर, ये स्थिति है कि नहीं बोलिए। 100% ये क्या कर रहे हैं हम अपने परिवार का? ये दोष हमारा है, ये गलतियां हमने की, समय नहीं है, लेकिन एक बात और बताता हूं। 4 महीने पहले की बात है, कलकत्ता में मैं सायंकाल में ऐसे ही लोगों के सामने, प्रवचन में नहीं, प्रवचन के पश्चात हम लोग बैठे थे, मैं अपनी बात लोगों को सुना रहा था। उसी समय एक पूज्य संत आए हमारे देश के, पूज्य क्षमाराम जी महाराज को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे संत है, बड़े सुविद्य और श्रेष्ठ संत है। उनका आगमन हुआ तो मुझे मेरी बात पूरी करनी थी, तो मैंने बतलाया, कह रहे यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो 4 बालकों को जन्म दीजिए, नहीं तो यह समाज नष्ट ही हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा। आपकी जाति और आपका परिवार, इनका सबका निर्वंश होने की कगार पर हम लोग हैं। मैं आंकड़ों के साथ बतलाऊंगा आपको, कभी उन्होंने मेरी बात पूरी होने पर एक किस्सा कहा कि महाराज आज की ही बात बताता हूं आपको, आज की, उस दिन की। आज दोपहर में मेरे पास कलकत्ता का एक अरबपति परिवार आया, परिवार मतलब बूढ़ा बूढ़ी दोनों आए और रो रहे थे। कारण क्या हुआ, उनके एक ही बेटा, अब उसे एक बेटे ने, यह परिवार एकदम धार्मिक, चुस्त धार्मिक परिवार, लेकिन किसी अन्य जाति की, जिनको एकदम हल्का मानने की प्रथा हमारे यहां पर कभी रही, ऐसी जाति की एक कन्या के साथ उसका मेलजोल हो गया और वो माना ही नहीं। उसके आगे इनको झुकना पड़ा। अब ये भी क्यों हो गया है बतलाता हूं आपको। अनेक बार ये बच्चे बच्ची क्या करते हैं, ऐसा नहीं सुनेंगे ना, हम चले जा रहा हूं जा रहा हूं, फिर पिताजी के चेहरे नहीं नहीं, मां के मां रोने लग जाती है, नहीं नहीं नहीं, फिर उसके आगे उनको झुकना पड़ता है। 2 पीढ़ी पहले 3-4 बच्चे होते थे, एक आदमी कहा मैं जा रहा हूं, जा बाप कहता था जा, वो कहीं जाता नहीं था। नाउ यू हैव गिवन अ चांस फॉर इमोशनल ब्लैकमेलिंग। एक ही बेटा हुआ, एक ही बेटी हुई, तो आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुए बिना रहने वाला नहीं है। आपकी सारी भावनाओं को तहस नहस करके इनका व्यवहार चलेगा। युवक युवतियों के लिए बोल रहा हूं मैं, तो उस बेटे ने ऐसा विवाह तो कर लिया, ठीक यहां तक भी मान गए। शादी के 6 महीने बाद उन दोनों ने मिलकर के बुढ़ा बुढ़ी से कह दिया, आपके लिए गंगा जी के तट पर हम दूसरी बढ़िया से बढ़िया कोठी बना देते हैं, लेकिन आपको ये बिजनेस और ये घर तो हमें छोड़ना पड़ेगा, आप जाओ। वो दोनों अरबपति पति पत्नी रो रहे थे महाराज के पास कि अब हम क्या करें। तो महाराज ने कहा, आपने पहले ही गलती की, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। विधाता ने हम लोगों को जो कुछ क्षमताएं दी, उनका विनाश करने वाले हम लोग। अच्छा, एक बेटा होकर के काम चलेगा नहीं, 2 चाहिए, फिर 2 बेटे चाहिए तो 2 बेटियां भी चाहिए, क्योंकि समाज में कन्याओं का प्रमाण कितना कम होता जा रहा है ये भी देखिए आप। सोची समझी बात बतला रहा हूं आपको। यदि आपको समाज का कुछ भान है, अपने परिवार का नाम, हमारा वंश चलता रहे ये आपको लगता हो, तो दूसरा उपाय ही नहीं है। एक ही बेटा हुआ, एक्सीडेंट में गया, वंश खत्म। मैं कितने घरों के दीपक बुझे हुए आपको यहां से उतर करके सुना सकता हूं, आपको भी पता होगा। देखो केवल मनोरंजन के लिए और इतिहास की कुछ जानकारी के लिए कहानी नहीं है, हमारे जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं इनका भी संकलन, इनका भी ज्ञान इन कथाओं के माध्यम से होना चाहिए। चार बालकों की आवश्यकता है। एक बात और बतला देता हूं लास्ट, यदि हिंदू समाज अभी नहीं संभला संख्या के बारे में तो ध्यान रखना बिना किसी प्रकार के अन्य प्रयास के आने वाले 25-30 वर्षों में सारा देश कश्मीर जैसा बन जाएगा। आप बनाना चाहते हैं तो देखो राष्ट्र का विचार, हमारी धर्म की परंपरा का विचार, अपने परिवार का विचार और अपने व्यक्तिगत स्वयं के भी बुढ़ापे के सुख का विचार, इन चारों कसौटियों पर यही बात प्रमाणित है। लेकिन इतना अंधा हो गया समाज और इतना धुंध हो गया कि उसका विवेक नहीं जग रहा, जगे चाहे न जगे। मैं तो कहने का यह काम 20 वर्षों से कर रहा हूं लेकिन उस समय में इतना थोड़ा बोलता था तो लोग हंसते थे, अब लोग कहते सोचने जैसी बात है, सोचने जैसी बात को जल्दी अमल में लाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो अरे तिब्बत के लोगों को भागने के लिए इंडिया तो भी था, हम लोगों को भागने के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा, किसी सागर में डूबना पड़ेगा या धर्मांतरण करना पड़ेगा। इतना एक गंभीर मामला चेतो। देवव्रत ने इन सारी बातों को सुना, बुद्धिमान देवव्रत ने तुरंत जाकर के पहले ये जानकारी निकाली कि पिताजी कहां कहां गए थे, लास्ट मंथ रिकॉर्ड, सारी खोजबीन करने पर उनके ध्यान में बात आ गई। और आश्चर्य की बात यह है स्वयं देवव्रत मंत्रिमंडल को साथ लेकर के उस दासराज के पास पहुंच गए। देवव्रत युवराज थे, अगले बनने वाले राजा वही थे। युवराज जब आ गए और पूछा कि पिताजी यहां पर आए थे, क्या क्या बात हुई थी, दासराज ने सारी बात बतला दी। एक बात की ओर आपका ध्यान जाता है कि नहीं, जाना चाहिए। ये सत्यवती किसकी कन्या है, एक मछुआरे की। मांग किसने की है, राजा ने। एक राजा आकर के मांग करता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता है, वो मछुआरा भी अपने घर में इतना सिक्योर है कि उसकी इच्छा के विपरीत राजा भी कुछ नहीं करना चाहता। आज आप इतने सेफ है क्या, बोलो। बड़े से बड़ा आदमी हमारे देश का आज सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अरे उस मत्स्यगंधा को अथवा योजनगंधा को अथवा सत्यवती को, तीनों नाम उन्हीं के हैं, यदि आज की स्थिति में लाना होता ना और यदि ये बिहार या उत्तर प्रदेश में करना होता ना, उसके बाप को पूछने की क्या जरूरत है, वो तो उसी रात में उसका अपहरण हो जाता। ये स्थिति है कि नहीं, बोलो। अब अगली बात सुनो, बिहार पीछे पड़ गया है, महाराष्ट्र आगे आ गया है। किसमें, क्राइम में। अपना महाराष्ट्र मराठी माणूस कहां जा रहे हम? बड़े से बड़े गुंडे कोर्ट में से भाग जाते हैं और निरपराध संतों को और महात्माओं को पकड़ करके कारागृह में ठूस दिया जाता है। दिस इज मेरा भारत महान। ये पाप किसका है? इसका उसका उसका मत ऐसा मत बोलना, ये अब हमारा पाप है सबका, मेरे सहित आपका, क्योंकि हमने कभी इस देश की चिंता का वहन ही नहीं किया। प्रामाणिकता से विचार कीजिएगा, चुनाव के दिन वोटिंग न करने वाले कितने लोग हैं आप में? वोट नहीं देना पाप है, ऐसा जिस दिन लगेगा उस दिन देश बचेगा। वो भी धर्म है, महाभारत की धर्म की दृष्टि कर्तव्य से जुड़ी है, माय ड्यूटी, ये महाभारत का धर्म का पहला अर्थ है। हमारे देश के नागरिक को मेरे अधिकार क्या है इसका तो कुछ कहा गया, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है इसका कभी बोध नहीं कराया गया। इसलिए सारे लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बनकर के बैठ गए संसद में। सारे पाप का उद्गम स्थान तो वहां है। कितना सुरक्षित है एक मछुआरा, एक मछुआरे की कन्या, सम्राट चला गया, बाद में युवराज गया, उस मछुआरे ने कह दिया कि एक बात पर हमारी, मुझे इस कन्या का कन्यादान करने में कोई आपत्ति नहीं थी युवराज, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ये शर्त थी कि इसको होने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत ने मंत्रियों की ओर देख करके पूछा, राज्य का उत्तराधिकारी कौन है? सबने कहा आप हैं। मैं हूं ना, आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं नहीं रहूंगा, सत्यवती माता जिस पुत्र को जन्म देगी वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। हाथ उठाकर के सबके सामने जब बोल दिया, सारे इसीलिए मंत्रियों को लेकर के गए थे, सब दंग रह गए। अब तो बात खत्म होनी चाहिए थी ना। वो मछुआरा बहुत ही चालाक था, शायद बंबई का ही था। ये मछुआरों के गांव है मूल में। उसने कहा महाराज ये तो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। अब देखो मेरा मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसने कहा आपके बारे में तो मुझे पूरा विश्वास है, आप परम धार्मिक हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में यह कलह खड़ा हो जाएगा। मेरी कन्या को होने वाले पुत्र और आपको होने वाले पुत्र, उनके भीतर एक निरंतर आग जलती रहेगी। आपके पुत्रों को लगेगा कि हमारे ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर अन्याय हुआ, और ऐसे संघर्ष में मेरी बिटिया के बेटे आपके बेटों के सामने क्या कर पाएंगे? देखो बेटी के बाप का कलेजा है मेरा, माफ करो, हम जैसे हैं दाल रोटी खाकर के सुखी है, हमारी कन्या कैसे थे? धन्य देवव्रत। देवव्रत ने कहा अच्छा, आकाश की ओर देखा, मेरे साथ के सारे मंत्री सुन ले, आकाशमंडल के सारे देवता सुन ले, आज से मैं आजीवन नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अद्य प्रभृति में दास ब्रह्मचर्यम् भविष्यति, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। नैतिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण मुझे पुत्र होने का कोई प्रसंग नहीं खड़ा नहीं होगा, जिसके कारण आपके मन में आशंका का कोई स्थान नहीं रहेगा। आजीवन मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करता रहूंगा। यो स्याम जनिष्यते पुत्र सनो राजा भविष्यति। ये जब भीष्म ने देवव्रत ने हाथ उठा करके कहा, सारे के सारे मंत्रियों के आंखों में आंसू आ गए। अरे कितना बड़ा त्याग, स्वर्ग के देवता भीष्म 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 कहने, भीष्म का अर्थ है भयंकर। इतने भयंकर व्रत को ग्रहण कर लिया है इस महापुरुष ने। देवव्रत ने कहा, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? दासराज के भी आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने इस प्रसंग से भीष्म का देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। भीष्म ने तुरंत सत्यवती माता के प्रणाम किया। वो दरवाजे में खड़ी थी, कहा, मां चलना है पिताजी के पास। रथ में बैठा करके जब सत्यवती को लेकर के वे चले, मंत्रियों ने दौड़ करके पहले ये बात शांतनु को बतला दी थी। जैसे ही शांतनु के पास जाकर के पहुंचे हैं भीष्म, अत्यंत विवल होकर के शांतनु ने कहा, बेटे तुमने ये क्या किया? अरे पुत्र के विवाह की तैयारी करने वाले तो पिता संसार में सब होते हैं, लेकिन अपने पिता के विवाह के लिए अपने जीवन का पूरा पूरा यज्ञ बना देने वाला एक ही पुत्र संसार ने देखा, वह भीष्म है। पितृभक्ति के परम आदर्श। शांतनु ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु भी तुम्हें ले जा नहीं पाएगा तुम्हारी इच्छा के विपरीत। यमराज को भी खड़ा होना पड़ेगा, जब तुम चाहोगे तभी तुम धरा का त्याग करोगे। शांतनु की वाणी में यह प्रभाव कैसे, हम कल देखेंगे। संपूर्ण महाभारत पर छाए हुए व्यक्तित्व जो है वे तीन है, वेदव्यास, भीष्माचार्य और तीसरे छाए हुए व्यक्ति नहीं, साक्षात श्री भगवान है। संपूर्ण महाभारत श्री भगवान की लीला है। ये नरनारायण का लीला विलास। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की थोड़ी सी वार्ता केवल 10 मिनट में देखेंगे।
रानी की जय, महारानी की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
बोलो बरसाने वाली की जय,
बोलो बरसाने वाली की जय, जय
बोलो बरसाने वाली की जय,
बोलो बरसाने वाली की जय, जय
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
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 बोलो बरसाने वाली की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय,
प्रेम से बोलो
राधे राधे,
प्रेम से बोलो
राधे राधे,
भाव से बोलो
राधे राधे,
भाव से बोलो
राधे राधे,
सावन में
राधे राधे,
गोकुल में
राधे राधे,
बरसाने में
राधे राधे,
रंगकाम में
राधे राधे,
जगली में
राधे राधे,
गली में
राधे राधे,
गली में
राधे राधे,
गली गली में
राधे राधे,
रानी की जय, महारानी की जय,
राधे रानी की जय, महारानी की जय।
महारानी की जय।
राधे रानी की जय, महारानी की जय।
ऋषभ भानु दुलारी की जय, जय जय।
ऋषभ भानु दुलारी की जय, जय जय।
ऋषभ
भानु दुलारी की जय, जय जय।
राधे रानी की जय, महारानी की 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 जय।
तोता बोले
राधे राधे,
तोता बोले
राधे राधे,
कोयल बोले
राधे राधे,
मोर बोले
राधे राधे,
बंदर बोले
राधे राधे,
गंगा बोले
राधे राधे,
यमुना बोले
राधे राधे,
बोले
राधे राधे,
सूरज बोले
राधे राधे,
डाल डाल पर
राधे राधे,
फूल फूल में
राधे राधे,
पत्ते पत्ते
राधे राधे,
लक्ष्मी बोले
राधे राधे,
बोलो
राधे राधे,
जोश बोलो
राधे राधे।
रानी की जय, महारानी की जय। राधे
रानी की जय, महारानी की जय।
राधे रानी की जय, महारानी की जय।
राधे रानी की जय, महारानी की जय।
बोलो की राजकुमारी की जय, जय जय।
बोलो की राजकुमारी की जय, जय कुमारी की जय, जय जय।
राधे रानी की जय, महारानी की 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 जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथ सर्वगुणोपेतः कालपरमशोभनः यर्येवाजन जन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम्। सारे भूमंडल के ऊपर पाप का अत्यंत अधिक भार बढ़ने के कारण, अब ये पाप का भार बढ़ने का अर्थ क्या है ये हम कल देखेंगे, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये केवल पौराणिक बात नहीं, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस है। संपूर्ण भूमंडल के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार, भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माण शरणैययौ।
अत्यंत पापी राजाओं के दैत्यों जैसे व्यवहार के कारण भूमंडल के ऊपर पाप खूब बढ़ गया। भूमि ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, गोरूप में ब्रह्मा जी देवताओं को और भूमि को लेकर के भगवान नारायण के पास जा। जब प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त का गान करते हुए ब्रह्मा जी को समाधि लग गई और समाधि में प्रभु ने स्वयं संकेत दे दिए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रियः। भगवान स्वयं भूमि के दुख को जानते हैं और वे भूमंडल के ऊपर पधारने वाले हैं। प्रभु का जन्म वसुदेव जी के गृह में मथुरा जी में होगा, भगवान की बाल लीला गोकुल में होगी। इस बात को सुनकर के सारे देव देवियां, श्रुतियां, संत महात्मा, सिद्ध पुरुष गोकुल उसके आसपास जन्म लेने के लिए अत्यंत वेग से चल दिए। भूमंडल के माथुर मंडल में महाराज हुसैन जी का राज है। उनके नौ पुत्र है, बड़े पुत्र का नाम कंस है। उग्रसेन जी के पुत्र, उग्रसेन जी के छोटे भाई देवक नाम के हैं। उनके सात कन्याएं हैं, सबसे छोटी कन्या का नाम देवकी है। इन भगवती देवकी जी का मंगल विवाह मथुरा में ही पर्व धार्मिक शूरसेन जी के पुत्र बुजदेव जी के साथ निश्चित हुआ और धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन वरवधु को विदा किए जाने पर उनकी शोभा यात्रा में उनके रथ का सारथ्य करने बैठे हुए युवराज कंस के लिए एक बड़ी विलक्षण आकाशवाणी हो गई। अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुध। अरे बावले कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से तुम आज ले जा रहे हो, ध्यान रखना उसके अष्टम गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। इस बात को सुनकर के कंस देवकी को मारने पर उतारू हो गया, लेकिन वसुदेव जी के समझाने पर एक बात कंस के गले उतर गई कि देवकी के होने वाले हर बालक को वसुदेव जी लाकर के कंस के पास पहुंचा देंगे, इससे भगिनी हत्या का पाप और उसके कारण होने वाला कलंक, इससे कंस बरी हो जाएंगे। बात कंस के भी गले उतर गई। वसुदेव जी अत्यंत सत्यनिष्ठ होने का सर्वत्र ही उनका नाम था। वसुदेव जी और देवकी का, देवकी माता का गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। इस गृहस्थाश्रम में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। किंद सहनु साधु नाम, सच्चे साधु है वसुदेव जी महाराज, सज्जनता की पराकाष्ठा। उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। इतने सुंदर बालक को देख करके कंस भी दंग रह गया। पूछा, कितना सुंदर बालक है? वसुदेव जी ने कहा, भांजा किसका है? अरे भांजा कंस का ही था। तो थोड़ा कंस को अच्छा भी लगा। इतने में भांजा हंसा तो मामा फंसा, और कंस के मन के भाव ही बदल गए। कंस का, वसुदेव जी यह तो प्रथम बालक है, मुझे अष्टम बालक से है, आप इसको ले जाइए। मृत्यु के मुख में जाकर के भी मेरा बालक जीवित आया। लौट करके देवकी माता को परम आनंद हुआ, नारद जी महाराज को परम चिंता हुई, और वे तुरंत आकर के पहुंच जाते हैं कंस के पास। कंस ने जब सारी बात बताई, नारद जी ने कहा, कंस भैया, सारे संसार में तुम जैसा भोला तो मैंने कोई नहीं देखा। कंस ने जब ये कहा कि यह प्रथम गर्भ था महाराज, अरे प्रथम काय का और अष्टम काय का? किसने कहा प्रथम? आकाशवाणी ने ना। तुम अपने आकाशवाणी वालों का भरोसा करते हो? ये आकाशवाणी वाले ऐसे ही बोलते हैं। जाते जाते एक बात ध्यान में रखिएगा, मीडिया का विश्वास मत कीजिएगा। सच्ची बात बताता हूं आपको, आज का सारा मीडिया हिंदू धर्म का नाश करने पर तुला हुआ है। मैं आपके पास पूरी लिस्ट दे सकता हूं, आई गॉट ऑल प्रूफ्स। 80% हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये या तो अरबस्तान के पैसों से चलता है या मिशन के चर्चेस के माध्यम से चलता है। 80% और सबका एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान को लूटो, हिंदुओं को खत्म करो। हम क्या कर रहे हैं सोचो। सब लोग देश लूटने में लगे और हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे विभिन्न प्रकारों से। इसलिए कितनी सारी सत्य बातें
आपको पता ही नहीं होती है। अब एक ये सोशल मीडिया जो नया आयाम निर्माण हुआ है, इसमें से कुछ कुछ बातें आ जाती है। अधिक समय नहीं है, लेकिन ये आकाशवाणी ऐसी है, कंफ्यूजिंग। नारद जी ने कंस को समझा दिया और कंस से जाकर के उस प्रसन्न बालक का शिलाखंड के ऊपर पटक करके वध कर दिया, सबको बंदी बना दिया, राजा वो बन गया, पिताजी को भी बंदी बना दिया, गुरुसेन जी को, वसुदेव जी और देवकी जी का गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ता गया। छह बालकों को कंस ने मारा, सप्तम बालक के रूप में प्रभु की आज्ञा से पधारे हुए भगवान शेष नारायण को भगवती योग माया ने वसुदेव जी की ही पूर्व पत्नी भगवती रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस बालक का जन्म वहां पर हुआ। बलभद्र भगवान की, अष्टम गर्भ के रूप में भगवान देवकी माता के गर्भ में और साक्षात भगवती जगजननी बिंदवासिनी मां भगवती यशोदा मैया के गर्भ में आकर के पहुंच जाते। देवताओं ने स्तवन किया, भगवती देवकी माता का दिव्य तेज बढ़ता गया। सत्यव्रतम सत्य परंति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यभिष्टूय पुरुषम्। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन स्तवन करके देवता चले गए। कंस ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी, भद्रपद मास का आरंभ हुआ, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, नक्षत्रों में रोहिणी है। अथ सर्वगुणोपेता काल परम शोभन ये वाजन जन्म रक्ष शांतर्क्ष ग्रह तारकम दिश प्रसे दुर्गगन निर्मलोडुगणोदय मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकर। सारे भूमंडल के ऊपर हरियाली छाई हुई है, एक एक जलाशय में कमल के फूल अपने आप खिले हुए हैं। वायुदेव सुखद स्पर्श करते हुए बह रहे हैं, अग्निहोत्र के अग्नि अपने आप अधिक तेज से प्रज्वलित हो गए, संतों के हृदय में आनंद ही लेने लग गया। कुछ मंगल घटना घटेगी ऐसा विश्वास सबको हो गया और ठीक मध्यरात्रि के समय मथुरा जी के कारागृह के सूतिकागृह में श्री वसुदेव जी महाराज और भगवती देवकी माता इन दोनों के समक्ष हजारों सूरज प्रकाशित हो जाए एक साथ, इतना दिव्य प्रकाश खड़ा हो गया, नेत्र ही चौंधी आ गए। लेकिन ध्यान में आया यह प्रकाश दिव्य होने पर भी दाहक नहीं है, शांत शीतल प्रकाश है। प्रकाश की शीतलता का अनुभव करते हुए जैसे ही दोनों ने नेत्रों को खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी बाल स्वरूप नारायण भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, वसुदेव जी महाराज तो भगवान के दिव्य रूप को देख करके दिव्य नृत्य ही करना चाहते हैं लेकिन बंधे हुए हैं, फिर भी हाथ जोड़ करके स्तवन किया। समद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र भयोद सौभगम। भगवान ने वसुदेव जी से कह दिया मुझे गोकुल लेकर के चलिएगा, और वहां पर यशोदा मैया ने जिसको जन्म दिया है उस लाली को लेकर के यहां पर लिवा आइएगा, चिंता मत करना। भगवती देव की माता व्याकुल होकर के कहती है नन्हे बनो मुन्ने बनो मेरे गोदी में पधारो। प्रभु ने कहा मां वो मैं करने वाला हूं, लेकिन आपने मेरे लिए तीन जन्म आपने मेरे लिए अत्यंत घोर तपस्या की, कितनी भूख सही कितनी प्यास सही, कितनी ठंड सही कितनी गर्मी सही कितनी बरसात सही, और केवल मुझ जैसा पुत्र मांगा। लो मां तीसरी बार तुम्हारा लाला बनकर के मैं आया। बाल कृष्ण लाल की जय। बभूव प्राकृत शिशु सूचना के अनुसार शिवदेव जी महाराज उस बालक को दलिया में लेकर के चलते हैं, द्वार खुल जाते हैं, द्वारपाल सोए हुए मिलते हैं, जमुना जी भी मार्ग दे देती है, गोकुल में आकर के नंदमोहन में यशोदा मैया के समीप लेती हुई नवजात कन्या को लेकर के श्री वसुदेव जी उस कन्या को अपनी डलिया में रख लेते हैं, लाला को वहीं छोड़ करके पुनः मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर मथुरा में पहुंचते ही इधर लाला ने त्याय 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 रुदन करना आरंभ किया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अजोपि सन् अव्ययात्मा। भगवान स्वयं अपने रुदन से समस्त ऋषियों को यही संदेश दे रहे थे मैं आ गया। ऋषियों के लिए तो संदेश ये था, लेकिन गोकुलवासियों के लिए और विशेष करके नंदभवन वालों के लिए तो लाला का रुदन था। बालक के रुदन को सुना और मानो नंदभवन जग गया, और पता चलते ही कि लाला पधारे हैं, दिव्य उत्सव का आरंभ हुआ। नंद के लाला की
गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। भवन में नौबत बाजे के पास बधाई बाज रहे
हरे नंदन यशोदा के गाय बधाई बाज रही
हरे नंदन यशोदा के गाय बधाई बाज रही
हरे नंदन यशोदा के गाय बधाई बाज
Yeah. अपनो जन्म सफल कर लीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल कृष्ण की जय
राधा वर सुखद कन्हैया
राधा वर सुखद कन्हैया
जन जन को नवनीत कवैया
जन जन को नवनीत कवैया
भटगी मन नैन तुरैया अपनो सरब कैन को दीजे
अपनो सरब कैन को दीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
आरती बाल कृष्ण की दीजे
आरती बाल कृष्ण की दीजे
तरी बोलन मधुर
सुन
पावे सुख पी जो इनको जावे
सुखी जो इनको जावे
अगर को अपनों कर लीजे
अपनो
जन्म सफल कर लीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल